ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಜತ್ಪಾದಪಲ್ಲವಜುಗಂ ವಿನಿಧಾಯ ಕುಂಭ ದ್ವಂದೇ ಪ್ರಣಾಮ ಸಮಯೇ ಸಹ ಗಣಾಧಿರಾಜ ವಿಘ್ನಾನ್ ವಿಹಂತು ಮಳಮಸ್ಯ ಜಗತ್ರಯಸ್ಯ ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂಧ ಅಧ್ಯಾಯ 9 ಪ್ರಹ್ಲಾದ ದ್ವಾರಾ ನೃಸಿಂಹದೇವ್ ಕಾ ಶಾಂತ ಕಿಯಾ ಜಾನಾ, ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಸ್ತುತಿ, ಬಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ದ್ವಾರಾ ನೃಸಿಂಹದೇವ್ ಕು ಸ್ತುತಿ ಕಿಯಾ ಜಾನಾ, ಬಾ ನೃಸಿಂಹ ಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ತೋ ಇಸ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಿ 40 ನಂಬರ್ ಶ್ಲೋಕ ತಕ್ ಕಾಲ ಚರ್ಚಾ ಹೋ ಗಯಾ ಥಾ, ಆಜ 40 ನಂಬರ್ ಶ್ಲೋಕ. ಏವಂ ಸ್ವಕರ್ಮ ಪತಿತಂ ಭವ ವೈತರಣ್ಯ ಅನ್ಯ ಅನ್ಯ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಅಸನ ಭೀತ ಭೀತಂ ಪಶ್ಯನ್.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಸ್ವ ಪರ ವಿಗ್ರಹ ವೈರಮೈತ್ರಂ ಹಂತ ಇತಿ ಪಾರಚರ ಪಿಪ್ರೋಹಿ ಮೂಢಂ ಅದ್ಯ ಏವಂ ಸ್ವಕರ್ಮ ಪತಿತಂ ಭವ ವೈತರಣ್ಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಜನ್ಮ ಮರಣೋ ಸನಕ ಭೀತ ಭೀತಂ ಪಶ್ಯನ್ ಜನಂ ಪರ ವಿಗ್ರಹ ವೈಭ ಮೈತ್ರ ಹಂತೇತಿ ಪರಚರ ಪಿಪ್ರುಹಿ ಮೂಢಂ ಅದ್ಯ. ಏವಂ ಸ್ವಕರ್ಮ ಪತಿತಂ ಭವ ವೈತರಣ್ಯಂ ಅನ್ಯ ಅನ್ಯ ಜನ್ಮ ಮರಣಾಸನ ಭೀತ ಭೀತಂ ಪಶ್ಯನ್ ಜನಂ ಸ್ವಪರ ವಿಗ್ರಹ ವೈರಮೈತ್ರಂ ಹಂತೇತಿ ಪರಚರ ಪಿಪ್ರುಹಿ ಮೂಢಂ ಅದ್ಯ. ಏವಂ ಸ್ವಕರ್ಮ ಪತಿತಂ ಭವ ವೈತರಣ್ಯ ಅನ್ಯ ಅನ್ಯ ಜನ್ಮ ಮರಣಾಸನ ಭೀತ ಭೀತಂ ಪಶ್ಯನ್ ಜನಂ ಸ್ವಪರ ವಿಗ್ರಹ ವೈರಮೈತ್ರಂ ಹಂತೇತಿ ಪರಚರ ಪಿಪ್ರುಹಿ ಮೂಢಂ ಅದ್ಯ.
ಕೋಯಿ ಪಡ್ನಾ ಚಾಹತೆ
ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಏವಂ ಇಸ್ ತರಹ ಸ್ವಕರ್ಮ ಪತಿತಂ ಅಪ್ನೆ ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಫಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪತಿತ ಹುವಾ. ಭವ ಅಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿಕೆ ತುಳನಾ ಮೇ बैतरण्याम, बैतरणी नदी में जो मृत्यु के अधीक्षक जमराज के द्वारा द्वार के समक्ष बहती है। अन्य अन्य एक के बाद एक, जन्म जन्म, मरण मृत्यु, असन विभिन्न प्रकार का भोजन, भीत भीतम अत्यधिक भयभीत, पश्यन देखते हुए, जन्म जीव को, स्व अपना, पर पराया, विग्रह शरीर में, वैर मैत्रम मित्रता तथा शत्रुता मानते हुए, हंत हाय, इति इस तरह, पाराचर मृत्यु की नदी के दूसरी ओर स्थित आप पिप्रुही कृपया हम सबको बचा लें इस घातक स्थिति से। मूढ़म आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हम सभी मूर्ख हैं। अद्य आज क्योंकि आप स्वयं उपस्थित हुए हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, हे भगवान आप सदैव मृत्यु के नदी के दूसरी ओर उस पार स्थित रहते हैं, किंतु हम सभी अपने पाप कर्म के कारण इस ओर कष्ट भोग रहे हैं। निसंदेह है हम इस नदी में गिर गए हैं और जन्म मृत्यु की वेदनाओं से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं तथा भयानक वस्तुएं खा रहे हैं। अब कृपा करके हम पर दृष्टि फेरिए, न केवल मुझ पर अपितु उन सब पर जो कष्ट उठा रहे हैं, और अपनी अहित की कृपा तथा दया से हमारा उद्धार कीजिए तथा हमारा पालन कीजिए। तात्पर्य, भगवान शुद्ध भगवान के शुद्ध वैष्णव प्रह्लाद महाराज से न केवल अपने लिए अपितु समस्त पीड़ित जीवों के लिए प्रार्थना करते हैं। वैष्णव की दो कोटियाँ होते हैं, भजनानंदी तथा गोष्ठ्यानंदी। भजनानंदी केवल अपने निजी लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन गोष्ठ्यानंदी अन्य सबको कृष्ण भावना में तक ऊपर उठाना चाहते हैं जिससे उनकी रक्षा हो सके। ऐसे मूर्ख जो बारंबार जन्म तथा मृत्यु को एवं भौतिक जीवन के अन्य कष्टों को देख नहीं पाते हैं, इसके बारे में तनिक भी आश्वस्त नहीं रहते हैं कि अगले जन्म में उन पर क्या बनेगी, अगले जन्म उन पर क्या बीतेगी। निसंदेह ऐसे मूर्ख भौतिकताग्रस्त धूर्तों ने जीवन की अनुत्तरदायी शैली बना ली है कि वे अगले जीवन के बारे में सोचते ही नहीं। वे यह नहीं जानते हैं कि अपने ही पाप कार्यकलाप से मनुष्य को 84 लाख जोनि में से चुनकर शरीर प्राप्त होता है। भगवद गीता में इन धूर्तों को दुष्कृति न मूढ़ा कहा गया है। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है ऐसे अभक्तों को पाप कर्म में लगना पड़ता है, इसलिए वे मूढ़ अर्थात मूर्ख तथा धूर्त है। वे ऐसे मूर्ख होते हैं कि उनने यह भी ज्ञान नहीं रहता कि अगले जीवन में उन पर क्या बीतेगी। यद्यपि वे सब तरह के प्राणियों को घृणित वस्तुएं खाते हैं देखते हैं, यथा सुकर मौल खाते हैं, मगरमच्छ सभी तरह की व्यर्थ की वस्तुएं खाने के कारण अगले जीवन में अत्यंत गर्हित वस्तुएं खाने के लिए बाध्य होंगे। एक वैष्णव ऐसे गर्हित जीवन से सदैव भयभीत रहता है, अतएव ऐसी विभत्स दशा से उबरने के लिए वह अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाता है। भगवान उन पर दयालु हैं, अतः वे उनके हित के लिए प्रकट होते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य हो जाता है, उस समय में स्वयं अवतरित होता हूँ। भगवद्गीता के 7th अध्याय के 7 नंबर श्लोक। भगवान पतिता आत्माओं की सहायता के लिए सदैव सन्नद रहते हैं, लेकिन वे मूर्ख तथा धूर्त होने के कारण कृष्ण भावना मृत की ग्रहण नहीं कर पाते और कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं करते। इसलिए यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है, किंतु वे कृष्ण भावना में आंदोलन में उपदेश करने के लिए भक्त रूप में आते हैं। जा रहे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण का निष्ठावान दास बने। आमार आज्ञाएं गुरु हया तारो ई देश। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 7th अध्याय की 128 नंबर श्लोक। मनुष्य को गुरु बनना चाहिए और सारे विश्व में भगवद्गीता की शिक्षाओं का उपदेश देकर कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहिए। एवं स्वकर्म पतितं भववैतरण्यां अन्य अन्य जन्म मरण असन भीत भीतं पश्यन् जनम स्वपरः विग्रह वैरमैत्रम हन्तेति पराचरः पिप्रोहि मूढ अद्य। हे भगवान, आप सदैव मृत्यु की नदी के दूसरी ओर उस पार स्थित रहते हैं, किंतु हम सभी पाप कर्म करने के कारण इस ओर कष्ट भोग रहे हैं। निसंदेह हम इस नदी में गिर गए हैं और जन्म मृत्यु की वेदनाओं से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं तथा भयानक वस्तुएं खा रहे हैं। अब कृपा करके हम पर दृष्टि फेरिए, न केवल मुझ पर अपितु उन सब पर जो कष्ट उठा रहे हैं, और अपनी अहित की कृपा तथा दया से हमारा उद्धार कीजिए तथा हमारा पालन कीजिए। प्रह्लाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं किनको? नृसिंह भगवान को। केवल अपने हित के लिए नहीं, हम सभी जितने भी बद्ध जीव है, समस्त बद्ध जीवों के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहते कि प्रह्लाद महाराज जैसे वैष्णव, वो केवल अपने स्वार्थ की चिंतन नहीं करते हैं। इसलिए वैष्णव 2 कोटि के होते हैं, एक भजनानंदी और दूसरा गोष्ठ्यानंदी। भजनानंदी वैष्णव केवल अपने के लिए चिंतन करते हैं, स्वयं भजन करके ही भक्ति करके वो भगवत धाम चला जाना चाहते हैं, दूसरे का क्या हुआ नहीं हुआ वो चिंतन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कुछ वैष्णव प्रह्लाद महाराज जैसे होते हैं, उन्होंने केवल अपने के लिए चिंतन नहीं करते और दूसरों के लिए भी चिंतन करते हैं। जैसे ही कोई पिताजी के 10 पुत्र होते हैं और से 10 पुत्र उन्होंने खेलने के लिए इधर फील्ड में चले गए, कुछ फुटबॉल खेलने के लिए बाहर कुछ खेलने के लिए गए, लेकिन पिताजी ने इनको कहा था कि देखो सूर्यास्त के पहले घर में वापस आ जाना। तो पिताजी के निर्देशन को कोई एक बेटा याद रखा और सूर्य तो अकेले सूर्यास्त पहले आके घर में पहुंच गया, लेकिन दूसरे जो रह गए उनमें से कोई एक दूसरा बेटा था कि वो सोचा कि नहीं, अरे ये सब भूल गए, सभी को मैं एक साथ में, उसको जब याद आ गया तो फिर और सभी को इकट्ठी किया, कहा कि चलो सभी साथ में चलते, कहाँ घर में वापस चलते हैं, बैक टू गॉड हेड, भगवान के धाम में लौट चलो, समय हो गया, चलते सभी साथ में।
अर्थात जो दूसरे रहता तो वो सभी को साथ में लेकर घर में लौटता है, तो पिताजी किसके प्रति सब खुश रहेंगे? जो पहला बेटा अकेले पहुंच गया उसके प्रति खुश नहीं, कम से कम आदेश पालन करके पहुंच गया। लेकिन दूसरे जो था कि जो सभी को साथ में लेकर पहुंचा, तो किसके प्रति अधिक खुश रहेंगे भगवान? जो सभी को एकाठी करके केवल निज स्वार्थ की चिंतन न करके सभी के स्वार्थ को चिंतन करते हुए और पिताजी को प्रसन्न करने के लिए सभी को साथ में लेकर पधारा। तो भगवान कहते कि 84 लाख जोनि में जितनी भी जीवात्मा भटक रहे हैं, ये सभी के मैं कौन हूं? मैं ही एकमात्र पिता हूं, इसलिए प्रत्येक जीवात्मा उनके पुत्र है। और सभी प्रत्येक जीवात्मा श्लोक कहता कि एवं स्वकर्म पतितंग भव वैतरण्य। सभी जीवात्माएं प्रहलाद महाराज कहते कि हम सभी अपना अपना कर्म के कारण ये भवसागर व वैतरणी नदी में गिर गए हैं। ये वैतरणी नदी किसको कहते हैं? प्रभुपाद जी लिखते कि जो मृत्यु के अधीक्षक जमराज के द्वार के समक्ष बहती है। वैतरणी नदी कहाँ बहती है? जमराज की मृत्यु के अधीक्षक जमराज के द्वार के समक्ष बहती है। कौन सा? वैतरणी नदी। अर्थात ये जन्म मृत्यु संसार से संसार के बहती है, ये नदी जाकर भवसागर में मिल जाती है। सारे नदी जाके कहाँ मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं। इसी प्रकार ये वैतरणी नदी भी जाकर कहाँ मिलती है? समुद्र में। भवसागर एव वैतरणी जमद्वार नदी तस्याम। श्रीधर स्वामी कहते कि भवसंसार एव वैतरणी जमद्वार नदी तस्या। ये भवसागर है और इसमें सभी लोग जन्म मृत्यु संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहे हैं। अगले तात्पर्य प्रभुपाद लगे कि ये वैतरणी नदी, इसको भी कहा जा सकता है कि जो आध्यात्मिक जगत तथा भौतिक जगत को विच्छिन्न करता है। भौतिक जगत एक वैतरणी नदी के एक साइड में है, दूसरे साइड में आध्यात्मिक जगत, अर्थात इसको कर्णार्णव सागर भी कहते हैं। महाविष्णु शयन किए हुए काल हम चर्चा किए थे, कारण को सही विष्णु, उस कारण वही कारणार्णव सागर में एक साइड में भवसागर है, एक साइड में भौतिक जगत है और उसके दूसरे साइड में आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक है। लेकिन इसी प्रकार प्रहलाद महाराज कहते कि स्वकर्म पतितम, अपने अपने कर्म करके ही प्रत्येक जीवात्मा भवसागर में गिर गया है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि आमी कृष्णदास यही विश्वास हई ले तो आर दुख नहीं। जब तक हम इसी भावना को स्वीकार नहीं करते हैं तो खाचो हाबू डुबू भाई, पानी में जैसे कोई डुबकी लगा तो फिर उठता है, हैं? ऐसे हाबू डुबू खाते हैं, बार बार डुबकी लगा फिर जन्म चक्र में भटकते रहते हैं। लेकिन जब तक जीवात्मा इस प्रकार अपने कर्म के कारण स्वकर्म के कारण इंद्रिय तृप्ति में ही फंसा हुआ है और भगवान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है, स्वयं जो कृष्ण की दास उसी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता तो बार बार जन्म चक्र में भटकते रहता है। इसलिए अन्य एक के बाद एक जन्म मरण असन भीत भीतम। जन्म मरण बार 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 ऐसे जन्म मृत्यु चक्र में भटकते हुए सदा भयभीत रहता है कौन? जीवात्मा। लेकिन प्रहलाद महाराज ने भगवान को ये प्रार्थना करते कि हे प्रभु, आप कृपा करके हम सभी को भवसागर से पार कर दीजिए। बारंबार उठा रहता था भयानक वस्तु खा, अब इसलिए वो प्रार्थना, कब आप कृपा करके हम पर दृष्टि कीजिए, न केवल मुझ पर अपितु ये सारे बद्ध जीवों पर, सभी पर कृपा दृष्टि कीजिए और आपने की अहित की कृपा तथा दया से हमारा उद्धार कीजिए तथा हमारे पालन कीजिए। ये गोष्ठ्यानंदी वैष्णव की जो चिंतन धारा है, चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त थे वो भी प्रहलाद महाराज जैसे, उनकी भी चिंतन था, उनके नाम था वासुदेव दत्त हैं, चैतन्य महाप्रभु ने एक बार इनको कहे कि आप कुछ वर मांगो। उन्होंने क्या वर मांगा? कहा कि 84 लाख जोनि में जितने भी जीव भटकते रहते हैं, जन्म मृत्यु संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख भोग रहे हैं, हे प्रभु ये सारे जीवों के जितनी भी पाप, ये सारे पाप मुझे दे दीजिए और ये समस्त जीवों की पाप मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, और उसके लिए मुझे यदि प्रलय आ प्रलय नरक में रहना पड़ेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, ये सभी के लिए मैं अकेला ही कष्ट भोगने के लिए तैयार हूँ, और ये सारे जीवों को आप जनसार से मुक्त कर दीजिए। ये गोष्ठी आनंदी वैष्णव की भावधारा है, वो स्वयं को नरक में डालकर भी दूसरों को उद्धार करना चाहते हैं, वो अपने हित की केवल चिंतन नहीं करते, सारे जीवों के हित के चिंतन में रहते हैं। उसी प्रकार प्रह्लाद महाराज भी स्तुति में एक महाजन है, वो भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप हम सभी को, केवल मेरे को नहीं, जितने भी पतित आत्मा है संसार में, अपने कर्म के सुकर्म के अपने कर्म के कारण बार बार जन्म मृत्यु संसार में ये बैतरणी नदी में डुबकी लगाते हैं, खाचे हाबू डूबू भाई, बार बार ऐसे ही जन्म मृत्यु चक्र में भटकते रहते हैं, तो ये सभी की कृपा कीजिए। आप यदि कृपा करेंगे, अहेतु की कृपा करेंगे, दया करेंगे, तभी हमारा उद्धार हो सकता है, नहीं तो कोई दूसरी उपाय मुझे नहीं देखता है, और आप कृपा करके हमारे पालन कीजिए, हमको उद्धार कीजिए। हंते ति पाराचर पितृही मूढ़म अद्य, हम तो मूढ़ है लेकिन पिप्रुही कृपया आप कृपा करके हमको बचा लीजिए। इसलिए प्रह्लाद महाराज केवल अपने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, अन्य सारे जीवों के लिए प्रार्थना करते हैं। अगले कई श्लोकों में उसी भावधारा को व्यक्त करते हैं। अगले श्लोक प्रभुपाद जी ने लिखते कि तात्पर्य अंत में कि इसीलिए हम सभी को गुरु बनना चाहिए। क्या कहते हैं? मनुष्य को गुरु बनना चाहिए और सारे विश्व में भगवद गीता की शिक्षा का उपदेश देकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। सभी लोग प्रह्लाद महाराज के अनुयायी बनकर सारे बद्ध जीवों को उद्धार कार्य में लग जाना चाहिए, प्रभुपाद जी के कहना है। अगला श्लोक में कहते कि कहनु अत्र ते अखिल भगवन प्रयास उत्तारणे अस्य भव संबलोपहेतो मूढ़ेषु वै महदनुग्रहार्थबन्धो किं तेन ते प्रियजनानुसेवताङ्नः। हे परमेश्वर, हे समग्र जगत के आदि आध्यात्मिक गुरु, आप ब्रह्मांड के कार्य को संभालने वाले, अतएव आपकी सेवा में लगे हुए पतिता आत्माओं का उद्धार करने में आपको कौन सी कठिनाई है? महापुरुषों के लिए मूर्खों पर दया दिखाना देखलाना आवश्यक है, अतएव मैं सोचता हूँ कि आप हम जैसे पुरुषों पर अहित की कृपा प्रदर्शन करेंगे जो आपके सेवा में लगे हुए हैं। भगवान के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, जिनकी इच्छा मात्र से ही सब कुछ संगठित होता है, उन्हीं की इच्छा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं, सूर्य चंद्र उन्हीं के आदेश से ही आलोक प्रदान करते हैं, इंद्र उन्हीं के आदेश से ही बारिश प्रदान करता है। तो ऐसे भगवान के लिए बद्ध जीवों को इच्छा मात्र से उद्धार करना कौन सा कठिनाई है? इसलिए प्रह्लाद महाराज कहते कि हे प्रभु आप अहित की कृपा प्रदर्शन कीजिए, और आप चाहेंगे तो सारे पतिता आत्मा भवसागर से उद्धार हो सकते हैं, विशेष रूप में जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं इनको तो आप उद्धार कर सकते हैं। भगवान ऐसे ही नारद मुनि में एक बार भगवान को कहे हैं, भगवान गए वैकुंठ में, कहे कि देखो प्रभु आप यदि चाहेंगे आपकी इच्छा मात्र से सारे बद्ध जीव संसार से उद्धार हो सकते हैं, आप क्यों इनको ऐसे जन्म मृत्यु संसार में डाल रखे हैं? ये सभी को उद्धार कर दीजिए, आपकी इच्छा मात्र से उद्धार हो जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। भगवान ने मुस्कुराए, कहे कि ठीक है नारद जी, ये कार्य आपको ही दे दिया मैं, आप जाओ और जिसको चाहते हैं इसको मेरे पास लेके आओ, धाम में ले आओ, हैं वैकुंठ में सबको लेके आओ, जाओ आप जिसको चाहते। नारद जी ने बड़े खुश हुए और इन्होंने जब ऐसी मर्त्यलोक में पधारे, सबसे एक यंग लड़का उनको सामने आ गया है, यंग लड़का 20 साल के लड़का, 21 साल के लड़का सामने आ गया। नारद जी उसके सामने प्रकट हो गए, वो देख रहा है। नारद जी देखकर तुरंत प्रणाम किए, बोले मैं नारद हूँ, भगवान से विशेष शक्ति लेकर आया हूँ, तुमको अभी यहीं से कहाँ ले जाऊँगा, भगवान के धाम में ले जाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ भगवत धाम ले चलता हूँ। तुमने कहा नारद जी देखिए अभी मेरे माता पिता मेरे शादी का व्यवस्था कर रहे हैं, अभी मेरा अभी फिक्स हो गया, डेट फट फिक्स हो गया, मेरा शादी होने वाला है और आप तो असमय में आ गए, अभी हठात कैसे बोल रहे हैं। तो चलूँगा जो अवश्य आपके साथ चलूँगा, लेकिन थोड़ा शादी वादी हो जाने दीजिए, पिता माता से व्यवस्था कर रहे हैं। फिर शादी हो गया, फिर नारद जी के लिए चलो अभी, बोले नहीं यार वंश रक्षा तो होना चाहिए ना, शादी कर लिया तो बच्चा भी चाहिए ना, एक बच्चा हो जाए। फिर बच्चा हो गया तो फिर नारद जी आए, चलो अभी, बोले नहीं बच्चा देखिए ना छोटा सा बच्चा अज्ञान बालक, उसका लालन पालन करना तो मेरे काम है ना, थोड़ा बड़े होने जो हो जाने, देखिए देखिए कितने फिर तोतली बोलना लगा, बोले कितने सुंदर बोलती है, हैं ऐसा कहते कहते नारद जी जितनी बार आते कुछ ना कुछ बहाना करके टालते रहा है। बच्चा भी बड़ा हो गया, स्कूल में पढ़ाई कर लिया, फिर उसका भी शादी का उम्र हो गया, वो जवान हो गया, बोला कि नारद जी अभी लड़का को शादी करा के फिर देखें वो फिर चलते हैं। शादी भी लड़का का हो गया, फिर बच्चा भी हो गया लड़का का, पर पोता भी देख लिया, कह देखिए ना पोता कितने हैं। ऐसा ही बार 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 नारद मुनि पधारे और गया नहीं, अंत में वो वृद्ध होकर शरीर को त्याग दिया, फिर अगला जन्म कुत्ता का बन गया, क्योंकि वो शरीर के उस घर के प्रति बहुत आसक्ति होने के कारण धन के प्रति वो कुत्ता बनकर वो घर के सामने बैठा, कुत्ता के शरीर में था, फिर भी वो नारद जी ने आपको स्मरण दिलाया, देखो तुमको स्मरण आ रहा, तुम इस घर पूर्व जन्म के घर का मालिक था और तुम सब कुछ कितना परिश्रम करके घर बनाया था और सब क्या, अभी तुम देखो अभी कुत्ते के शरीर में, कुत्ते के शरीर से भी कोई भगवत धाम जाना इतने आसान नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ, चलो मेरे को भगवान ने पूरा पावर दिया है, तुझे लेके जाऊँगा। तब कहा नारद जी देखो आप ही खुद ही बोल रहे कि मैं कितना परिश्रम करके घर बनाया था और कितने धन सब संचय किया था, लेकिन देख रहे ना मेरे बेटा और इसका बहू जो है ये सारे धन को लुटा रहे हैं, हैं वो फिल्म देखने चले जाते, कहाँ नाइट क्लब में चले, कहाँ जाते घूमते, सारे पैसे को लुटा रहे हैं, और मैं यदि इधर नहीं बैठूंगा चोर आकर सारे घर धन लूट के चले जाएंगे, हैं इसलिए मैं तो इधर बैठा हूँ कुत्ता बनकर, आपको और कई कोई भी दूसरा कैंडिडेट नहीं देखता, मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं, हैं तो संसार की यही स्थिति है। जैसे ही आपका वो क्या तुकाराम को लेने के लिए जब विमान आया था वैकुंठ से आया, तुकाराम जा रहे थे, उसका पत्नी को भी बोला है, क्या नाम पत्नी का नाम है, महाराष्ट्र के लोग आपको पता होना चाहिए ना, आउली, उसको बोले कि चलो तुम भी चलो साथ में चलो, देखो विमान आ गया दोनों साथ में चलते वैकुंठ हो गई, लेकिन नहीं नहीं तू ही जा, मैं तो इधर भड़ भेड़ बकरी और ये हैं क्या भैंस बकरी ये लोग को सब देखभाल करूंगी, ये तुम ही अकेले जा वैकुंठ, हैं वैकुंठ से विमान आने के लिए भी ये संसार की माया इतनी प्रबल है, व्यक्ति जैसे प्रहलाद महाराज ने कही कि सब अपने अपने कर्म के कारण वो बंधे हुए हैं बंधन में, वो जाने भी नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज कहते कि प्रभु आप यदि चाहते तो ऐसे हो सकता है, हाँ आप यदि चाहते तो ऐसे हो सकता, हाँ और विशेष रूप में आप इनको तो उद्धार कीजिए, हम जैसे भक्त जो कि आपकी भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं, मद भक्त पूजा अधिक, भगवान कहते कि मेरे भक्तों की पूजा मेरे से अधिक है, इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कि स्तुति में कि कम से कम तो किंग तेनते प्रियजना अनुसेवतांग न, जो आपकी प्रियजनों की सेवा में लगे हुए शुद्ध भक्तों की सेवा में लगे हुए, जैसे प्रहलाद महाराज ने किसकी सेवा में लगे हुए थे, नारद मुनि की सेवा में, कम से कम उन्होंने कहते हमें तो उद्धार कर लीजिए हैं भवसागर में, अतः मैं सोचता हूँ कि आप हम जैसे पुरुषों पर हित की कृपा प्रदर्शित करेंगे जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन एक दृष्टि से ना प्रहलाद महाराज कहते कि हम का भवसागर से केवल मेरे को नहीं है और सभी को भी उद्धार कीजिए सारे बद्ध जीवों को, लेकिन फिर भी कहते कि यदि कम से कम जो भगवान के सेवक सेवा करते हैं, आपकी भक्त है, इनको भी तो उद्धार करना आपका धर्म है। लेकिन अगला श्लोक में फिर उनकी भावना को व्यक्त कर रहे हैं।
नैव द्विजे पर दुरात्यया वैतरण्या तद्वीर्य गायन महामृतमग्नति चित्तः सोचे तत विमुख चेतस इन्द्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढान।
हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी ठहरता हूँ आपके जस तथा कार्यकलाप के विचारों में लीन रहता हूँ। मैं एकमात्र उन मूर्ख तथा धूर्तों के चिंतित हूँ जो भौतिक सुख के लिए अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएँ बनाते हैं। प्रहलाद महाराज कहते कि हे प्रभु, हे नृसिंहदेव, मैं अपने के लिए उद्दीजे अर्थात इतने भयभीत नहीं हूँ, मैं स्वयं के लिए भयभीत नहीं हूँ। ये बैतरणी नदी में जो डुबकी लगा मेरे को ऐसे भय नहीं है, लेकिन मैं विशेष रूप में किन के लिए सोच रहा हूँ, जो विमूढ़ है, जो मूर्ख है, उद्भवन माया सुखाय भरम उद्भवतो विमूढ़ान, जो माया सुख, जो असली सुख नहीं है, सुख समझ रहे संसार में। संसार में किसको सुख लोग समझते हैं? मैथुन आगार जीवन, आहार निद्रा भय मैथुन के माध्यम से जो सुख प्राप्त होता है ये माया सुख, इसको कहते माया सुख। माया अर्थात जो है नहीं उसको है समझना। ऐसे संसार में जो माया सुख को में भ्रमित होकर जब बद्ध जीव, जब विमूढ़ है, मूर्ख हैं, उन्हीं के बारे में मैं चिंतन करता हूँ, मेरे बारे में चिंतन नहीं करता हूँ, क्योंकि इसलिए कहते सोचे तत् विमूढ़ चेतस इंद्रियार्थ, जो विमूढ़ चेता भले विमूढ़ मूर्ख है, इंद्रिय सुख के बारे में चिंतन कर, इंद्रियार्थ माया सुखाय, जो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए केवल लगे हुए हैं, जो आपकी भक्ति नहीं कर रहे हैं उनके बारे में चिंतन करता हूँ। मैं तो मेरे बारे में नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि तद्वीर्य गायन महा अमृत अमृत मग्न चित्त, मैं तो कहीं भी रहूं आपकी महिमा को गायन करने में तत्पर रहूंगा, इसमें कोई मुझे बाधा नहीं आएगी। प्रहलाद, क्योंकि प्रहलाद महाराज विशेष रूप में प्रसिद्ध है भगवान को सदा स्मरण रखने में, नवदा भक्ति में, एक एक व्यक्ति भक्ति का एक एक अंग को अपने जीवन में लिभा कर वा जीवन में उतार कर महान बने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, श्रवण करके ही, श्रवण परीक्षित परीक्षित महाराज भागवत की श्रवण करके ही, किनकी मुख से? सुखदेव गोस्वामी के मुख से वो अपने जीवन को धन्य बनाए, भगवत धाम जाने में सक्षम बने। कीर्तन करके ही, सुखदेव गोस्वामी भागवत का गायन करके ही सुनाकर परीक्षित महाराज को गायन कीर्तन कर, कीर्तन का अर्थ हरे कृष्ण मंत्र का भी कीर्तन, कीर्तन का अर्थ भी भागवत का कीर्तन करना, उसी रूप में वो अपने जीवन को धन्य बनाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, सदा भगवान को स्मरण रखने में प्रहलाद महाराज के नाम आता है। ये सदा 24 घंटे किसके स्मरण करते थे? भगवान सिंहदेव को, कृष्ण को स्मरण करके ही अपने जीवन को सफल बनाया। इसलिए वो कहते कि मेरे लिए चिंतित नहीं हूँ, मैंने मूर्खों के लिए चिंतित है जो आपकी भक्ति नहीं कर रहे हैं, भ्रमित होकर माया सुख में, इंद्रिय सुख में जो है संसार में जुड़े हुए हैं, इन्हीं की चिंतन करता। मैं तो कहीं भी रहूंगा, कहीं भी बैठूंगा, कब किसी भी स्थिति पर रहूंगा, मैं तो आपकी चिंतन में मग्न रहूंगा। महाअमृत मग्न चित्त, आपकी दिव्य लीलाओं को चिंतन करने में, गायन करने में तो सदा रत रहूंगा, लेकिन विशेष रूप में ये मूर्खों के लिए चिंतित हूँ। संसार भर में सारे व्यक्ति दुख से निपटने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, इसलिए प्रहलाद महाराज विशेष रूप में ऐसे ही मूर्खों के लिए चिंतित है। प्रहलाद प्रभुपाद ने कोट करते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहंगमिति वन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से अपने आप को उन सारे कार्यों का कर्ता मान लेता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। वो कष्ट किसी ने भोगता है कि वो अपनों को ही करता कि अभिमान रखने के कारण प्रकृति में वो सब कुछ नहीं करता, लेकिन वो सोचता कि मैं कर रहा हूँ सब कुछ है, मैं और मेरा हर बात में जोड़ने के कारण, स्वयं को ही करता समझने के कारण वो इसी कर्मबंधन में फंस जाता है। सतसंग छाड़ी कहीनु असते विलास सही लागी बांधी लय कर्मबंध फास। भक्ति ठाकुर कहते मुझे कर्मबंधन की फास किस लिए बांध लिया, कि मैं सत्संग छोड़कर असत्संग में आया, सदा इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ये असत्संग इंद्रियों की संग करके इंद्रियों को तृप्त करने में लग गया, कभी भी सत्संग में बैठकर हरि कथा का चर्चा नहीं किया, इसलिए ये कर्मबंधन मुझे बांध लिया है। हैं प्रभुपा जी भगवत गीता की 7वां अध्याय के 14 नंबर श्लोक को भी कोट करते हैं कि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया माम एवजे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। ये प्रकृति तो सब कुछ करती है, लेकिन प्रकृति इतनी शक्तिशाली है, ये भगवान की ही माया होने के, भगवान की शक्ति होने के कारण भगवान कहते कि त्रिगुणमयी माया जो सत्वगुण रजगुण तमगुण की रसी में देवताओं को बा देवताओं को सत्वगुणी की रस्सी में सोने के जंजीरी में बांध कर रखा है ऊर्ध्वलोक में, और जो हमारे मर्त्यलोक में जो चांदी की जंजीरी में किनको बांधे रजगुण संपन्न मनुष्यों को, और जितने भी पशु व अन्य राक्षसों को जो निम्न सत्ता तमगुणी व्यक्ति हैं इनको लोहा के जंजीर में बांध कर रखी है। दैवी हैसा गुणमयी मम माया दुरतया, लेकिन ये मेरा ही माया है, मेरा ही बहिरंग, मैं ही इसको शक्ति दे रखा, इसलिए दूरत्व या इसको अतिक्रम करना संभव नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मेरी शरण में आता है तो फिर वो आसान से इसको अतिक्रम कर सकता है। तो हम लोग माया में क्यों है, किसीलिए हम भगवान को भूल गए, क्योंकि भगवान को प्रार्थना नहीं करते, नियमित हम प्रार्थना नहीं करते। भगवान कहते जो मेरी शरण में आता है वो माया को अतिक्रम कर सकता है, है? हम खाने भूल जाते हैं, खाने भूलते हैं नहीं, व कोई किसी प्रकार के इंद्रियों में सांद्र सोने भूल जाते हैं, अपने आप नींद आ जाता है, सो जाते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन से हम कभी नहीं, इसको त्यागना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन भगवान को प्रार्थना करना भूल जाते हैं, हैं? जैसे खाने के लिए नहीं भूलते, इस प्रकार भगवान को प्रार्थना करने भी भूल जाना नहीं चाहिए, नियमित प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने नियमित प्रार्थना करते थे, राधा रस विहार के सामने आते थे और प्रत्येक दिन प्रार्थना करते थे। एक दिन प्रभुपाद जी यहाँ पर भागवत की कक्षा दिए तो कहे कि कक्षा में कहे कि देखो आप जितने भी सब बैठे हो आप सबको माया, आप सब माया से मोहित हो बद अजीब, लेकिन माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सब बोल सोचे कि सही बात है, प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त है, उनको क्या माया कैसे बिगाड़ी, हम सब बद अजीब है इसलिए माया हमको बंद की रखी है। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्लास जो कक्षा जो समाप्त किए, फिर राधा रस बिहारी के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़कर कुछ बोल रहे थे, तो उनका जो सेवक थे सेक्रेटरी बाजू में खड़ा होकर सुन रहे थे प्रभुपाद जी क्या करें। प्रभुपाद जी ने यही प्रार्थना करते थे कि हे राधा रस बिहारी मेरे पर सदा कृपा दृष्टि है रखिए, मुझे कृपा कीजिए, जैसे आपकी बहिरंग शक्ति आपकी माया शक्ति मुझे कभी कबलित न कर सके। हैं तो बड़ा आश्चर्य चला है, प्रभुपाद जी ने अभी कहे क्लास में कभी माया तो कभी इनको कुछ बिगाड़ नहीं है, अभी फिर कह रहे हैं। तो उन्होंने कक्षा में ना उनके रूम में जाकर पूछे कि प्रभुपाद जी आप अभी भी क्लास में कहे कि आपको माया कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आप अभी में देखा प्रार्थना कर रहे थे राधा राज बिहारी के सामने कि माया हे राधा राज बिहारी कृपा करके आपकी बहिरंगा शक्ति की प्रभाव से सदा मुझे सुरक्षित रखिए। ऐसे कैसे? तो प्रभुपाद जी कहे कि यही तो रहस्य कि किसी माया मुझे नहीं पकड़ सकता, बा माया मरी कोड़ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं नित्य प्रतिदिन उनको प्रार्थना करता हूँ मुझे माया से बचाने के लिए। लेकिन हम नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं कोई बचने के लिए, हैं? जैसे खाना को खाना खाने भी नहीं भूलते हैं, लेकिन भगवान को प्रार्थना करना भूल जाते हैं माया से। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि इस्कन के जो भक्त होते हैं इनके पास में एक ये कमी है कि वो सब इतना अपने को शक्तिशाली जो सोचते कि माया को डरते नहीं है, हैं माया को डरते नहीं, कहीं माया क्या कर लेगा हमारा। लेकिन माया इतनी शक्तिशाली है कि भगवान कहते हैं मम माया दुरत्तया, जो संपूर्ण मेरी शरण में नहीं है, भगवान की शरण में नहीं है, भगवान कहते कि जो मेरा द्वारा सुरक्षित सुरक्षा प्रदान नहीं किए गए उनको माया को जितना संभव नहीं है, माया इनको पकड़ सकता है, किसी भी मुहूर्त में इनको कबलित कर सकता है। माया का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? मन में लस्टी डिजायर को लाना। इसलिए भगवान ने गीता में कहते कि यही शत्रु महाबाहो काम रूप सुदुष्कर्म, ये सबसे बड़ा शत्रु है अर्जुन है। आवृत ज्ञान में तेन ज्ञानीना नित्य बैरिणा काम रूपेण कौंतेय दुष्कुरेण न लेना चाह। कहते कि समस्त बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को भी आवृत कर लेता है ये काम वासना लस्टी डिजायर है, और ये सब समय हृदय में है दहकते रहता है, जलते रहता है, इसको शांत करना आसान नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को भी हरण कर लेता है। आवृत ज्ञान में तेना ज्ञानीना नित्य बैरिणा, केवल मूर्खों की शत्रु नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानियों की भी शत्रु है। तो एक उनके शिष्य बैठा था, व्यासदेव जी ने पढ़ाते थे शिष्यों को बैठा कर गीता है, तो ये श्लोक जब आ गया तो एक कहा कि ये कैसा संभव है। जैमिनी एक उनके शिष्य था, कहे कि ये मैं विश्वास नहीं करता हूँ, जो लस्टी डिजायर काम वासना होता है वो मूर्खों को सता सकता है, ज्ञानी को कैसे सताएगा? ज्ञानी जो सारे शास्त्र जानते हैं, सब रहस्य जानते हैं, तो उनको कैसे सब ये मैं स्वीकार नहीं करता। कि व्यासदेव जी कहे कि अरे इसको भगवान ने कहा, स्वीकार कर लो। लेकिन वो कहा मैं नहीं स्वीकार करता हूँ, बोला ठीक है तुझे सिखाऊंगा समय आने पर है। इसलिए उन्होंने क्या किया, व्यासदेव जी ने एक दिन जोग से जैमिनी अपने कुटिया बनाकर, सब ब्रह्मचारी आश्रम बनाए थे, वही इंचार्ज थे ब्रह्मचारी आश्रम में, रहते थे एकांत में, ब्रह्मचारी आश्रम था जंगल में, कुटिया बना के सब ब्रह्मचारी रहते थे, वहाँ पर पूरे आश्रम का वो इंचार्ज थे। तो व्यासदेव जी ने अपने योग शक्ति की बल पर ऐसे बादल की छाया आया, पूरा अंधार हो गया, ठंडे के हवा बहने लगा और बारिश टपकने लगा, और व्यासदेव जी ने स्वयं एक सुंदर स्त्री युवती स्त्री धारण रूप धारण करके उस कुटिया के गेट पर जाकर आवाज़ की टक 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 है। तो जैमिनी ने बेचारे आकर हैं नहीं कहे कि लेकिन नारी की आवाज़ है, स्त्री की आवाज़ है, विपदग्रस्त हो गया हूँ, हैं जंगल में रास्ता भूल गया हूँ मैं, और जो घोर बारिश हो रहा है, बिजली चमक रहा है, पत्थर गिर रहे हैं, मेरे जान निकल जाएगी, कृपा करके थोड़े समय के लिए आपके आश्रम में आश्रय दीजिए। लेकिन वहाँ से जैमिनी कहती है ब्रह्मचारियों के आश्रम है, इसका अंदर आने के स्त्रियों को अनुमति नहीं है, युवती स्त्रियों को इसका अंदर आने के नहीं है, तुम और कहीं देखो आगे देखो। तो कहे आप कैसा वैष्णव हो, आपने को वैष्णव कहते तो वैसे कैसा हो है? जो ज़्यादा कहने लगता तो जैमिनी ने कहे कि ठीक है हमारा चौकीदार भी आज नहीं है, वो घर गया, तो चौकीदार की कमरा गेट के पास है उसी में रहना, बारिश छोड़ते ही तुम भाग जाना, चले जाना चुपचाप, किसी से बात नहीं करना, किसी को अपना सकल नहीं दिखाना। बोले ठीक है, लेकिन गेट में तो आपका लॉक लगा हुआ है। तो जैमिनी ने स्वयं आए उसको चाबी देने के लिए, किसको? उस व्यासदेव जी ने जो तो स्त्री रूप धारण कर रखे थे, किनको? सिखाने के लिए, गीता के श्लोक कैसे सत्य है। चाबी जब दिए तो जैमिनी स्वयं आए चाबी लेकर देने के लिए, गेट का चाबी, एक चाबी आएगा और उस रूम में रही, फिर वहीं से निकल जाना। चाबी देने के लिए आए तो वो जो स्त्री जो देखे सारा शरीर भीगा हुआ था बारिश में, पूरा भीगे हुए था, उसके शरीर के ऊपर थोड़ा सा नज़र एक नज़र डाल गया, क्योंकि जैमिनी ऋषि का, इसके बाद वो चले गए बस देखकर। जाकर अपने कमरे में अंत में गए, सोने के लिए कितने भी प्रयास किया आँख बंद करके, लेकिन वही दृश्य इनको दिखाई पड़ा, बार बार वो सुंदर स्त्री का युवती स्त्री का रूप दिखाई पड़ रहा है, सो नहीं पाए कितने भी प्रयास करने पर, इतनी विचलित तो हो गए। आकर वो जो व्यासदेव जी ने जो स्त्री रूप तो व्यासदेव धारण करके रखे थे, वो जो चौकीदारी कमरे में जाकर अंदर में रूम बंद करके वो रहे, ये आकर उनको बोले गए खोलो 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 ठकठक ठकठक का, बोले नहीं मैं नहीं खोलूँगा, ये जो आश्रम के जो महंत है मुझे आदेश दिए है, मैं किसी को दर्जा नहीं खोली, खाली बारिश छोड़ने तक मैं यहाँ पर हूँ, फिर मैं चले जाऊँगा अपने मार्ग पर। क्योंकि नहीं नहीं अरे तुमको जो बोला था वही मैं स्वयं बोल रहा हूँ, जैमिनी जो आश्रम का इंचार्ज वही बोल रहा हूँ। बोले नहीं नहीं आपने बोला था कि किसी को नहीं खोलना, मैं किसी को नहीं खोलूंगा दर्जा। वो इतनी उत्तेजना इनको बढ़ने लगा, वो ऊपर चढ़ गए और वो चाली को छप्पर को एक क्या किए उसमें एक छिद्र बनाकर वहां से नीचे कूद गए। और सोच रहे थे कि सुंदर स्त्री है, उसको आलिंगन करने जा रहे थे तो वो कौन थे, वो कपड़ा गो ढांके तो वैष्णव ने कपड़ा उतार लिए मुख से, देखे कि अरे दाढ़ी पक्का दाढ़ी। बोले गुरुदेव, बोले समझ में आ गया तेरे को मूर्ख है। भगवान कहे कि मम माया दुरात्तया, इसको कोई अतिक्रम नहीं कर सकता है जब तक भगवान की शरण में नहीं जाएगा। जब तक भगवान स्वयं किसी को रक्षा नहीं करेंगे, संसार में किसी की हिम्मत नहीं है भगवान की माया शक्ति को अतिक्रम करना। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते कि हे प्रभु, मेरे लिए मैं चिंतन नहीं करता हूँ क्योंकि मैं तो सदा आपके भजन में मग्न हूँ। है अमृत मरे आपकी तद्वीर्ज गायनम महा अमृत मग्न चित्ता, आपकी वीर्ज गायन में आपकी महिमा को गायन करने में सदा तत्पर रहता हूँ, विशेष रूप में सदा मैं आपके स्मरण में रहता हूँ, इसलिए मेरे लिए आपकी चिंतन के चिंता नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये सारे बद्ध जीव ये जो आपकी चिंतन नहीं कर रहे हैं और इन्हीं के बारे में विशेष रूप में चिंतित हूँ, हैं ये लोग की कैसे उद्धार होगा, इसलिए मूर्खों को धूर्तों को छोड़कर मैं अकेले आपके साथ में आपके धाम नहीं जाना चाहता हूँ, ये सभी को साथ में लेकर चलना चाहता हूँ। इसलिए ये ऐसे प्रकार की चिंतन है भावधारा, इनको कहते हैं गोष्ठ्यानंदी वैष्णव की चिंतन है, जिन्होंने सोचते हैं कि अकेला है, इसलिए इनको महाजन कहते हैं। जो महाजन होते हैं केवल आपकी अपना चिंतन नहीं करते हैं, सारे बुद्ध जीवों को एक साथ उद्धार करने की चिंतन में रहते हैं। इसकी पुष्टि अगला श्लोक में और सुंदर भाव से हुई है। प्रायेण देवम मनुषा सो विभुक्ति कामा मौनं चरन्ति न परार्थ निष्ठा नैनान विहाय कृपणा विनोमुखे को नान्यं तोदस्य शरणं भ्रमतानुपश्ये। हे भगवान सिंहदेव, मैं देख रहा हूँ कि संत पुरुष तो अनेक है किंतु वे अपने ही मुख्य में रुचि रखते हैं, वे बड़े बड़े नगरों की परवाह नहीं करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं, किंतु जहाँ तक मेरी बात है मैं इन बिचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमल की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, अतः मैं इन सबको आपके चरण कमल के शरण में वापस लेना चाहता हूँ। प्रहलाद महाराज कहते प्रायण देव मुनय सो विमुक्ति कामा, प्राय जितनी भी मुनि ऋषि गण है, हे ईश्वर देव का अर्थ नृसिंह देव को संबोधित करते हुए कहते कि हे देव हे ईश्वर हे नृसिंह देव, प्राय मुनय जितने भी मुनि ऋषि है ये सब अपने मुक्ति की चिंतन में लगे हुए हैं। मौनं चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा, ये मौन धारण करके ही सब हिमालय में चले जाते हैं और तपस्या में रत रहते हैं, किसे बातचीत नहीं करते हैं। इनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य स्वयं का मुक्ति करना, स्वयं को ब्रह्म में लीन हो जाना जन्ममृत्यु चक्र में मुक्त होने के विचार करते हैं, लेकिन परार्थ निष्ठा दूसरों के हित चिंतन नहीं करते हैं। दूसरे क्या होता, संसार भाज जाने से हमको क्या होता है, स्वयं के उद्धार के चिंतन केवल करते हैं। इसलिए संसार ये सब बड़े बड़े शहर को त्याग कर, बॉम्बे जैसे शहर, दिल्ली जैसे शहर, लंदन न्यूयॉर्क जैसे बड़े बड़े शहर को त्याग कर कहाँ चले जाते, सब हिमालय में चले जाते, गुम्फा में बैठकर अपना मुक्ति की चिंतन करते हैं। चना और क्या खाते हैं, चना गुड़ और गंगा जल पी के बस स्वयं कैसे उद्धार हो जाएंगे उसी चिंतन में लगे रहते हैं। लेकिन ऐसे ही मूर्ख ऐसे ही संत मैं बनना नहीं चाहता हूँ। नैनाद विहाय कृपणा कृपणा विनिमुख्य एको, मैं ऐसा ही कृपण नहीं बनना चाहता हूँ, बस ये कृपण को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। कृपण का अर्थ क्या, पिछले एक श्लोक की मैंने प्रार्थना में नृसिंहदेव ने लिखे थे कि कृपण वत्सल, साधारण भगवान को किस रूप में हम देखते हैं, भक्त वत्सल के रूप में। नहीं, प्रहलाद महाराज इसी अध्याय के 16 नंबर श्लोक में कहते हैं, आप कृपण वत्सल भी है, केवल भक्त वत्सल नहीं, कृपण वत्सल। कृपण वत्सल का अर्थ, कृपण किसको कहते हैं, जो इंद्रिय सुख में लगा हुआ है, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, हैं बात, जिसके पास में भक्ति है और दूसरों, माने यदि भी वो केवल अपने स्वार्थ पर स्वयं की चिंतन करता है, दूसरों के हित चिंतन नहीं करता है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, माया सुख व इंद्रिय सुख में लगा हुआ है, उसको भी कृपण कहते हैं। कृपण मूर्खो तथा धूर्त, जो मनुष्य जीवन का लाभ न जानते हुए भौतिक कार्य में लगे रहते हैं। प्रभुपाद जी इसके अनुवाद करते हैं, मनुष्य जीवन का लाभ, ऐसे ही मूर्खों को भी छोड़कर कृपण, जो आपकी भक्ति से उन विमुख है, तो इनको छोड़कर मैं अकेला अपना कल्याण चिंतन नहीं करता हूँ। ये जैसे कुछ लोग जाते हैं प्रायण सब देव मुनय स्व विमुक्ति काम पाई सब, जैसे मुनि ऋषि जो जाते हैं हिमालय में जाकर तपस्या करके अपना मुक्ति चाहते, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मैं ऐसे ही बड़े बड़े शहर छोड़कर जाकर हिमालय में तपस्या नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो ऐसी कृपण जो बद्ध जीव है, जो आपकी भक्ति से विमुख है, इनको भी लेकर जाना चाहता हूँ, कहाँ, आपकी चरण में है। इसलिए ये कैसे आपके शरण में आएंगे, उनको भी मार्ग में दिखाना चाहता हूँ। आपके चरण कमल के शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, ये रहस्य मुझे पता है। ये तो मूर्ख है, धूर्त है, इनको पता ही नहीं इस रहस्य, लेकिन मुझे पता है। इसलिए मैंने ये सभी को चरण कमल शरण ग्रहण किए बिना कोई भी, अतः मैं उन सब को आपके चरण कमल के शरण में वापस ले जाना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखते कि कृष्ण भावना भावित, जो कृष्ण भावना में जो आंदोलन है, ये प्रहलाद महाराज के मार्गदर्शन में है। इसलिए हम सब जाए कि हिमालय में जाकर ऐसे तपस्या ध्यान सिखाना नहीं चाहते लोगों को, हम क्या करते हैं, बड़े बड़े शहर में ही हमारा केंद्र खोलते हैं, इस्कॉन के केंद्र खोला जाता है, और सारे बद्ध जीवों को इसमें कृष्ण भक्ति की शिक्षा देने की पूरे पूरे हम प्रयास करते हैं, हैं? और इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ इसी उद्देश्य से किया गया है। हम किसी को एकांत स्थान में ध्यान करने की शिक्षा नहीं देते हैं, जिससे वह यह देखा सके कि वह प्रगत हो चुका है, वह अपने कथित दिव्य ध्यान के बारे में गर्व का अनुभव कर सके। भले ही वह सभी प्रकार के मूर्खतापूर्ण भौतिक कार्य में व्यस्त क्यों न रहता हो, प्रहलाद महाराज जैसा वैष्णव कभी भी आध्यात्मिक प्रगति में झांसा देने के पक्ष में नहीं होते, प्रतुत वह लोगों को कृष्ण भावनामृत में जागृत करने के लिए रुचि दिखाते हैं। यही एकमात्र साधन है कलयुग में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हैं केवल इस कलयुग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वह केवल। हिमालय में जाकर कहीं गुम्फा के अंदर बैठ के चना गुड़ खा के गंगा जल पी के तपस्या करने का युग ये नहीं है। तो ऐसा ही, इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि जो प्रकृति में भगवान की महान भक्त नारायण जैसे प्रहलाद महाराज जैसे होते हैं, वो तो भागवत की प्रसिद्ध श्लोक छठा स्कंद के 17 अध्याय की 28 नंबर श्लोक में जैसे प्रार्थना की है, बा जैसे शंकर जी ने अपने भावना को व्यक्त किए हैं वृत्रासुर की महिमा, बा चित्रकेतु की, महाराज चित्रकेतु को महिमा का वर्णन करते हुए, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शन। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जो भक्त एकांत भाव से भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं, वे जीवन की किसी अवस्था में कभी भयभीत नहीं होते हैं। उनके लिए स्वर्ग मुख्य तथा नरक एक से हैं, क्योंकि वे भक्त भगवान की सेवा में लगे रहना चाहते हैं। और प्रहलाद महाराज इसी कोटि के महान संत थे, वो अपने के लिए चिंतित नहीं थे, सदा दूसरों की चिंतन करते थे। उनके लिए तो नर्क भी स्वर्ग भी और भगवान के धाम भी, सभी भी एक ही स्तर पर वो देखते थे। प्रभुपाद जी भी ऐसे ही थे, हैं, वृंदावन में रहते थे आध्यात्मिक धाम में, लेकिन वो कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क शहर में जो नर्क है, हैं, इसको आधुनिक जगत में प्रकृति में नर्क का, एक बार एक शिष्य ने पूछा लंदन में, प्रभुपाद नर्क का क्या डेफिनेशन है, नर्क किसको कहते हैं, हैं? प्रभुपाद जी ने कहे कि दिस लंदन इज हेल, यही लंदन ही नर्क है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य उगते नहीं है, सूर्य नहीं दिखा पड़ते आकाश में, जहाँ पर सूर्य कभी उगते नहीं है, अंधार रहता है, हैं तो वही नर्क है, लंडन इज हेल, क्योंकि यहाँ पर सब क्या गुमांग से खाते हैं, सब लोग पीते हैं, शराब पीते हैं, अवैध संग करते हैं, चारों नियम तोड़ते हैं, मांसाहार नशा सभी काम में, कली के चेले सब हैं, सारे कली के चेले जहाँ रहते हैं वही नर्क है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इस प्रकार दिव्य धाम वृंदावन को छोड़कर भी कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क शहर में, वहाँ पर भी जाकर सबसे जो घृणित जगह स्थल था बाबरी, मैंने जो हिप्पी लोग ने जहाँ रहते थे बाबरी स्ट्रीट, वहाँ करो जाता, लेकिन वहीं पर जाकर अपने छोटा सा है क्या प्रचार का केंद्र खोल दिए हैं, स्टोर फ्रंट में छोटा प्रचार केंद्र, वहीं से भगवद गीता का प्रचार करना शुरू किए हैं, स्टम्प स्क्वीन स्क्वायर पार्क में जाकर वहीं अकेले बैठकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने लगे, वृक्ष के नीचे बैठकर ताली बजाते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। इसलिए प्रहलाद महाराज की मार्गानुसरण करते हुए प्रहलाद प्रभुपाद ने भी ऐसे कहे कि नान्यं तोत्स्मरणं शरणं भ्रमत अनुपस्ये, मैं जानता हूं कि कृष्ण भावनावृत के बिना, आपके चरण कमल के शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इसलिए एक प्रभुपाद ने उसी मार्गानुसरण करते हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु के मार्गानुसरण करते हुए ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन को उन्होंने स्थापना किया। और ये भावधारा कहाँ से, प्रभुपाद कहते कि इस भावधारा प्रहलाद महाराज का भी भावधारा है, प्रहलाद महाराज भी ऐसे ही सोचते थे कि मैं मूर्खों को छोड़ के कैसे जाऊँ, मुझे ऐसा ही जाकर अकेले जाकर अपना हित के लिए हिमालय में गुम्फा में बैठकर तपस्या करना ये पसंद नहीं है, वरं इसी बड़े से बड़े शहर में रहकर जहाँ पर अधिक से अधिक बद्ध जीव निवास करते हैं तो उनको उद्धार करने के लिए मैं कुछ उपाय करूँगा, ये सभी को आपके दिव्य नाम की श्रवण कीर्तन करने में मैं प्रयास करूँगा। इसीलिए प्रत्युत कृष्ण भावना में आंदोलन का प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवद गीता की शिक्षाएँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं के विषय में आश्वस्त करने में रुचि रखना चाहिए, प्रत्येक केंद्र मेंबर को जो वैस्कन के इसलिए जाना चाहिए, घर घर में जाकर प्रचार करना चाहिए, प्रभुपाद ने सलाह देते अपने तात्पर्य में हैं। इसलिए छद्म आध्यात्मवादी चिंतक ये बनने का दार्शनिक बनने का आवश्यकता नहीं है, ऐसे वरंग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रत्येक सदस्य का भी कर्तव्य है कि प्रहलाद महाराज के मार्गानुसरण करते करते प्रति घरे गिया कर ई भिक्षा, भज कृष्ण कह कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, सभी को जाकर घर घर में भ्रमण करके ही ऐसा है कृष्ण की प्रचार करना चाहिए, जैसे भावधारा किस कौन व्यक्त कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज हैं। इसीलिए गौरांग महाप्रभु ने भी ऐसा ही सिखाया, आपने चिंतन मत करो सब समय पर दूसरे की चिंतन, हित का भी चिंतन करो दूसरे की भी कल्याण की चिंतन करो, नित्यानंद प्रभु इसलिए गौरांग महाप्रभु की आदेश को ही पालन करके ही नाम हट्ट का नाम के हाट पहले कौन खुला था, नित्यानंद प्रभु ने खोले हैं नाम के हाट, जिस हाट में जिस बाजार में क्या बिक्री होता है, हरि नाम की बिक्री किया जाता है, किसमें मूल्य क्या, कोई मूल्य नहीं है, कौन सा मूल्य में बिताया बिक्री होता था, श्रद्धा है, जिसके पास श्रद्धा है वही इसको खरीद सकता है, पैसा से नहीं, किससे खरीदा जाता है ये श्रद्धा से है। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण, नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन है पातिया छे नाम हट जीवेर कारण, पातिया छे
दिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण दिया प्रभुर आज्ञाए भाई मागिए भिक्षा प्रभुर बोल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा बोलो कृष्ण नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण नदिया कृष्णर संसार करो छाड़िया नाचार कृष्णर कृष्णर संसार करो छाड़ियो नाचार कृष्णर कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण बंधु कृष्ण माता कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण नदिया गो तुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण नदिया गो तुमे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा तो इसलिए हम उसी गौरांग महाप्रभु नित्यानंद की नित्यानंद प्रभु की मार्गानुसरण करने के लिए प्रभुपाद ने अब तात्पर्य में कह रहे हैं हिमालय में जाकर तपस्या नहीं करना अपना स्वार्थक चिंतन करके ही अकेले नहीं वरं बड़े से बड़े शहर में रहकर वहाँ पर कितनों कृष्ण भावना भावित करण जो बद्ध जीवन को वहाँ पर केंद्र खोल के घर घर में भ्रमण करते हुए लोगों को कृष्ण चेतना में लाना इनको भक्ति में लाना है इनको हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण कराना सिखाना है छोटे बड़े कोई भी घर आया सामने छोटा घर आया बड़ा घर आया जो भी आया सभी को क्या सिखाना बोलो कृष्ण भज कृष्ण बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हैं प्रत्येक घर घर में जाकर ये प्रत्येक कृष्ण भावना भावित कृष्ण भावना अमृत आंदोलन इस्कन के सदस्यों के कर्तव्य है प्रभुपाद जी कहते हम यही मार्गानुसरण करते हुए सभी को जाकर सिखाना चाहिए स्वयं हरे कृष्ण जब कहना चाहिए और दूसरों को भी बोलना जिसको भी देखते जा रहे देखो जिसको भी देख रहे ताकि उसको भी बोलना है इसको हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कराना और इसको भगवद्गीता के बारे में उपदेश करना है ये सभी का कर्तव्य है क्योंकि अगले श्लोक में फिर प्रहलाद महाराज अपने इस जगत में कैसे लोग समय को बिताते हैं बद्ध दुनिया में उसको व्यक्त करते भावना को यन मैथुनादि गृह मेधि सुखं हि तुच्छं कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखं तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाज कंडूनिवन मनसि जं विषहेत धीर विषयी जीवन की तुलना दो हाथों से खुजली खुजलान से ही की गई है गृहमेधि अर्थात तथाकथित गृहस्थ जिन्हें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है सोचते हैं कि इस खुजलना सर्वोत्कृष्ट सुख है यद्यपि वास्तव में यह दुख का मूल है कृपण जो ब्राह्मणों के सर्वथा विपरीत होते हैं बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते हैं किंतु जो धीर हुए है और इस खुजलाहट को सह लेते हैं उन्हें मूर्ख तथा धूर्तों जैसे कष्ट नहीं उठाना व कष्ट नहीं सहने पड़ते हैं आए प्रहलाद महाराज कहते कि संसार में सभी ऐसे ही भौतिकवादी चिंतन में लगे हुए सब कैसे लगे हुए मैथुन सुख जन मैथुनादि गृह मेधि सुखम ही
तुच्छ। प्रभुपाद कहते दो प्रकार की ग्रह मैंने जो जीवन जो विवाहित जीवन बिताते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक गृहस्थ और दूसरा ग्रहमेधी। ग्रहमेधी किसको कहते हैं? जो केवल अपने मैंने सब कुछ अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, कहता है कि मेरा घर है, मेरा बच्चा है, मेरे हैं, धन कमाता है, धन कमा के किसके लिए धन कमाता है? केवल स्वयं का इंद्रिय तृप्ति के लिए है। अच्छा खाएगा, क्या खाएगा? मांस खाएगा, शराब पिएगा और नाइट क्लब में जाएगा, ऐसी के लिए ऐसे बर्बादी करता है। संसार में इस धन को इंद्रिय तृप्ति में जो सब संपूर्ण उपयोग करता है, है? अभी देखे ना, अभी धरो कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम करके बहुत मैंने अभी उसका जरूरत कोई नौकरी कर रहा और जिस दिन दरमा मिलता है उसका पेमेंट मिलता है उस दिन वो पेमेंट लेकर आता है। और हमारे इस्कन के भक्त भी जानते ही आज पेमेंट मिलने वाला, जिस दिन सबको पेमेंट मिलता है उस दिन जाते कुछ ऐसे मिलेगा तो डोनेशन भगवान की सेवा में। सुख कहते कि भाई थोड़ा पैसा दे दो, भी कुछ आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है, कौन सा नृसिंह चतुर्दशी आ रहा है, कोई जन्माष्टमी आ रहा, थोड़ा डोनेशन दे दो भगवान की सेवा में, तुम्हारा कल्याण होगा, हैं, मंदिर में आओ संडे को हमारा फिस्ट होता है प्रसाद। तो बोला इसलिए परिश्रम करके धन कमाया है? बेकार के लोग, हम दिन महीना भर परिश्रम करके धन कमाया, आ गया इधर धन लेने, चलो यहाँ से आगे देखो। लेकिन वही व्यक्ति जब घर से पधारता है, घर में आता, पहुँचता घर में, उसको पत्नी को भी पता होता कि आज इसका पेमेंट मिलने वाला है। पत्नी गेट के आ जाती, गेट में आ जाती है, पूरा मुस्कुराते हुए आ जाती है और वो अपने कुछ स्कूटर से उतारते हुए, गाड़ी से उतारते हुए पूरे हाथ डालकर इसके जब में पूरा बंडल को निकाल के लेके चला जाता है। तो उस व्यक्ति के मुख से मुस्कान आ जाता है, बोला देखो ये व्यक्ति मेरे ये मुझे कितनी प्यार करती है, मुझे देना भी नहीं पड़ा सारे पैसा, जब में हाथ डालकर निकल ले। इसी को कहते कृपण, भगवान की सेवा में नहीं देना चाहता है लेकिन अपने इंद्रिय तृप्ति में सारा को सारा उपयोग करना चाहता है। तो इसलिए कहते कि इस प्रकार जो मैथुन आदि ग्रह मेधी सुख, इसको ग्रह मेधी कहते जीवन। लेकिन गृहस्थ जीवन कैसे हैं? वो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हैं जो कुछ भी प्राप्त करता है तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। घर को ही भगवान का ही मंदिर बना रखा है, वो घर अपना नहीं समझता है, सोचता कि घर का मालिक कौन है? भगवान है। मैं भी भगवान के दास हूँ, मेरे पत्नी भी भगवान की दासी है, बच्चों भी सब भगवान के दास दासी है, इनको इसी रूप में हम ट्रेनिंग देना हमारा कर्तव्य है, ऐसे सोचकर निमित्त बनकर केवल कार्य करता है। हैं, जैसे कहते कि गृहस्थों कैसे करना चाहिए ना, अपने इनकम के 50% कहाँ देना चाहिए? भगवान की सेवा में है। एक बार कहता था कि व्यक्ति कहा कि महाराज ये 50% यदि मंदिर में दे देंगे तो अपने परिवार कैसे चलाएंगे? हैं, बोले ये आदेश कौन इसको पालन किया था? प्रभुपाद जी कहते कि हमेशा रूप गोस्वामी का उदाहरण देते। कौन दिया? रूप गोस्वामी जब अपने नौकरी इस्तीफा दे दिए, वो बंगाल के नवाब हुसैन शाह के दरबार में मंत्री थे, जब अपने नौकरी इस्तीफा देकर संपूर्ण रूप में भक्ति में शामिल होने के लिए महाप्रभु को मिलने के लिए इलाहाबाद आए तो 50% धन उन्होंने साधु संतों को मंदिर में दे दिया था, 25% घर वालों को दिया था और 25% इमरजेंसी में फिर कुछ जरूरत के लिए रखा था, भक्ति ग्रंथों को प्रणयन करने आदि के लिए रखा था। लेकिन 50% जो आप रूप गोस्वामी के उदाहरण प्रस्तुत करी बोलेंगे, लेकिन रूप गोस्वामी ने कब दिया था 50%? जब घर बार छोड़ के संसार छोड़ के आ रहे तब दिए। हम संसार में है कैसे दे सकते? जब संन्यास लेने के चिंतन करेंगे तभी दे देंगे। कोई देता है संन्यास लेने के लिए जो जाता है घर का संपत्ति दे देता है, 50% ऐसे बेच के दे देता है, घर वाला देंगे इसको करने हैं? लेकिन लोग ऐसा ही चिंतन करते हैं, पैसा निकालना इतने आसान नहीं है लोग के पास में, लोग देना नहीं चाहते हैं, देना चाहता कोई नहीं, आसान से नहीं देगा। लेकिन इस प्रकार कृपण व्यक्तियों के लिए भी जो कृपण है और ऐसे सोचते हैं कि प्रकृत सुख कैसे है ना, मैथुन सुख ही असली सुख समझते हैं, ऐसा एक कृपण व्यक्ति। लेकिन प्रहलाद महाराज की एक कहते ये कैसा है ना, कंडुए ने न करो रिव दुख दुखम। जैसे कोई खुजली होता है, ऐसे खुजला करने से क्या होगा? थोड़ा सा ऐसे लगता है कि अच्छा है, लेकिन ज़्यादा खुजलने से क्या होगा? उधर घाव हो जाएगा, खून निकलेगा, फिर घाव हो जाएगा, फिर जलने लगेगा इसको, थोड़ा सा सुख ले और अधिक से अधिक कष्ट इसको भोगना पड़ता है। मैथुन आगार जीवन इसी प्रकार है, इसमें कौन सा झूठा, ये केवल माया सुख है। इसलिए ये कृपण कहलाते जो इस प्रकार मैथुन सुख को ही जीवन का असली सुख समझ रखा है। इसलिए प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में विशेष रूप में जमुना आचार्य की वो प्रसिद्ध गीत को कोट करते हैं। जदा जदवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंदे नव नव रस दाम आसित तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाणे भवती मुख विकार सुष्ठु निष्ठि वनंच। जमुनाचार्य भी जब समय था तो वो भी एक राजा थे, गृहस्थ जीवन में थे, और कितनी रानी थे उनके साथ में, कितनी रानी थे, 100 रानियां थे उनके पास, हैं सुंदरी रानियां थे, और उन्होंने भी ऐसे ही मैथुन आगार जीवन बिताते थे। गृहस्थ जीवन में रहकर ऐसे ही जन मैथुन आदि ग्रहों में भी सुख है तुच्छ सुख को उपभोग करते थे। लेकिन उनकी जो ग्रैंडफादर थे नाथ मुनि, तो उन्होंने जब मृत्यु के समय में सोचा कि मैं देखो मेरे पोता ऐसा ही संसार में फंस गया है, उसको उद्धार ना हो, अपने एक शिष्य राम मिश्र एक शिष्य थे उनके, उनको है कि देख मैं तो शरीर त्याग रहा हूँ लेकिन तुझे दायित्व दे रहा हूँ, तुम जाकर मेरे जो पोता है कौन, ये जमुनाचार्य, ये जमुना जाकर फंस गया माया में, चाहे राजा बन गया अपना भौतिक बुद्धि को दिखा कर, भौतिक विद्या बढ़कर राजा बन गया, लेकिन अभी 100 रानियों के साथ में वो मैथुन आगार जीवन में ग्रह में यदि सुख भोग रहा है, इसको जाकर जगाना फिर कृष्ण भक्ति में लेके आना। इसलिए राम मिश्र ने जाकर उसको इनको जमुनाचार्य के पास में मिलने के जाते थे, लेकिन वो ये तो सम्राट थे राजा थे, इनको कौन मिलने देगा। उन्होंने सर्वेंट बोले अरे तुम कहाँ से बाबा बोझे कि राजा को मिलेगा, इतने आसान नहीं राजा को मिलना है, राजा को मिलना बड़ा मुश्किल था, क्या करेंगे, लेकिन गुरु का आदेश है जमुनाचार्य को मिलना है, इसलिए इन्हें पीछे से जाते थे, पीछे से जाकर उनके लिए जो खाना बनाता था उसके एड्रेस ले लिए, वो जो रसोइया था उसी को जाकर कुछ ऐसे विशेष साग लेकर उसको देते थे, कहते थे कि क्योंकि जानते थे कि ये साग का जो भी खाएगा व्यक्ति की मन में सत्वगुण की है पैदा होगा, शुद्ध सत्वगुण की वृद्धि होगा, इसलिए वो साग देता था, और साग को कुकिंग करने कुक जो करता था उसको अनुनय भी नहीं करता था, ये साग बनाकर डेली राजा को देना खाने, तो साग लेकर राजा को डेली को बना बना कर रोसिया देता था साधा राजा, आस्ते आस्ते साग को डेली खाते खाते उसमें अटैचमेंट हो गया, और हटात एक ऐसे कई दिनों तक साल तक दे दो साल भर देते हुए हटात दिन बंद कर दिया साग देने के लिए, वो जो साग लेके आता था राम मिश्र और साग लाया नहीं, राजा ने जब खाना मैंने बोली अरे आज खाना में साग क्यों नहीं है, बोला पता नहीं वो एक व्यक्ति लाकर डेली देता था साग, मैं तो बनाने के लिए मैं बना के देता लेकिन आज तो और लाता नहीं, पता नहीं वो कहाँ गया, बोले क्यों नहीं लाया, कहाँ गया, वो व्यक्ति कुछ लेता था, कुछ पेमेंट लेता था तुमसे, नहीं कोई पेमेंट भी मांगता नहीं था, पेमेंट देने पर नहीं लेता था, कहता था कि मुझे राजा में प्रेम है, इसलिए राजा के हित ये साग खाने से उनकी हित होगा इसलिए मैं ये साग दे रहा हूँ, लेकिन अभी तो हटा तो और आता नहीं है, तो अभी राजा कहे कि जो भी अभी आएगा वो तुरंत मेरे पास ला के मिलाना है। कुछ दिन के बाद फिर वो जब आए तो राम मिश्र और उसे कहे कि राजा आपको मिलेंगे, साग तो लेके आए थे लेकिन कहीं राजा आपको मिलना चाहते, ये तो यही चाहता था राजा को कैसे मिलना है, राजा को मिलकर फिर अपना परिचय दिया, कहा कि मैं नाथ मुनि के शिष्य हूँ और आपके जो ग्रैंडफादर है आपकी जय जय उन्होंने बहुत कुछ संपत्ति आपके लिए रख कर गए छोड़ कर गए, वो शरीर त्याग दिया लेकिन आपके लिए बहुत अमूल्य संपत्ति रख कर गए, 7 दीवाल के अंदर में है वो संपत्ति है, और उसको सर्प ने क्या है सर्प ने सुरक्षित करके रखा है, अनंत शेष के सज्जा में सोए हुए थे कौन रंगनाथ जी, तो उन्होंने कही 7 दीवाल क्रॉस करने से जाके अंतपुर में रंगनाथ जी के दर्शन होता, वो तो समझ नहीं पे इस बार डिटेल नहीं कहा, तो उनको कहा कि ऐसे ही बहुत गुप्त संपत्ति आपके ग्रैंडफादर छोड़ के गए आपके लिए, चलिए मैं आपको संपत्ति आपको हैंडओवर करना चाहता हूँ आपको देना चाहता हूँ, वो तो पहले भी समझ नहीं पाता इसलिए संपत्ति के लोभ में तो आ गए, कहले हाँ हाँ मैं जाऊँगा आ गए, लेकिन रास्ते में आते आते रास्ते में इन्होंने इनको सारे भगवत गीता के श्लोक कहते आए समझाते, जहाँ जहाँ रुके वहाँ बैठकर क्या सुनाए इनको भगवत गीता, देहो न देही ने देही न अस्मिन जथा देहे कौमारंग जौवनंग जरा तथा देहांतर प्राप्ति हिरस्तत्र है, प्रत्येक जीव को इस प्रकार शरीर की परिवर्तन होता है, कौमारंग जौवनंग जरा तथा देहांतर प्राप्ति है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु सब ऐसे गीता के श्लोक को सुनाते सुनाते उनके मन में वैराग्य भावना ला दी। वो बचपन में इसको सीखे थे, पढ़े थे इसको गीता, लेकिन अभी राजा होने के कारण भूल गए थे। इनको फिर चेतना, कृष्ण भक्त चेतना फिर वापस आ गया। तभी जब वो भक्ति में प्रारंभ कर दिया, आकर जब रंगनाथ जी के चरण में पहुंच गए और उनको पूरा स्मृति आ गया, पूर्व जन्म के बचपन के जीवन, फिर वो वापस जाने के लिए राजपद को त्याग दिए। दोबारा फिर राजभवन में राजा बनने के लिए वापस नहीं आए, वहाँ पर रहकर भगवान की अनन्य भक्ति करने लगे। तभी उस समय इस भावना को उन्हें व्यक्त करते हैं कि जब मैं राजा था, जदवधि मम चित्त पेदार बिंद, जब से मैं कृष्ण के चरण में मेरे मन लग गया, रंगनाथ के चरण में लीन हो गया, भक्ति में मैं लीन हो गया, तभी जब मैं उस चिंतन को करता हूँ जब भी मैं राजा था और 100 रानियों के साथ, मैं रानियों की तरह घिरा हुआ था और रानियों के साथ एकांत में अंतपुर में इनको आलिंगन करने का मैथुन सुख के बारे में जब चिंतन करता हूँ, तो मेरा मुख भवती मुख विकार सुष्ठु निष्ठी बनंग, मेरा मुख विकृत हो जाता है, उसी दृश्य पर मुझे थूकने की इच्छा होती है। अर्थात भगवान की भक्ति में जो आनंद है, सांसारिक सुख उसके सामने अत्यंत तुच्छ है, लेकिन जो रसगुल्ला खाया नहीं है वो तो आलू का, जो आलू के भरता का जब कोट, आलू का भरता के ऊपर थोड़ा सा क्या शक्कर का कोट लगा के देने से जो खाया है उसको खाए के सोचता कि यही सबसे टेस्टी, लेकिन जब तक वो रसगुल्ला खाएगा नहीं तो कैसे होगा। हमारे उड़ीसा में जो गरीब लोग होते हैं तो वो लोग आप उनके बच्चों को रसगुल्ला नहीं दे पाते खाने के लिए, लेकिन बच्चा जब रोजता रसगुल्ला खाने के जाता तो क्या करता है, आलू का आलू को भरता बना, आलू के बॉयल करके उसके ऊपर इसके भरता जैसे बनाता है, उसके बनाकर उसके ऊपर थोड़ा छेना का थोड़ा पुट लगा देता है, शक्कर का पुट है, मीठा थोड़ा ऊपर से बस लगा देता, कहता है बेटा यही रसगुल्ला है, लोग वो खाता रहता सोचता कि यही रसगुल्ला है। लेकिन एक दिन सेठ जी का घर में गया, जो मालिक इस फैक्ट्री के मालिक था जिस घर में नौकरी करता उसके घर में गया, उसका फीस था, उसमें ओरिजिनल रसगुल्ला था। वो रसगुल्ला जो ओरिजिनल मिला खाने के लिए पूछा ये क्या है, नहीं ये रसगुल्ला है, बोला हमारा पिताजी तो देता था अभी, ये तो असली यही रसगुल्ला है, अरे ये तो कितना टेस्टी है, उससे तो आए ओरिजिनल रसगुल्ला जब खा लिया, जो फिर घर में जो वापस आया, फिर दूसरा दिन में उसके पिताजी आलू का गलाय का गुलगुला ऐसे कहते गुलगुला दिया खाने के लिए, वो खाएगा फेंक दिया, बोला ये रसगुल्ला नहीं है, मुझे रसगुल्ला चाहिए, कहाँ रसगुल्ला है। भगवान की भक्ति का जो सुख है ये रसगुल्ला है, और संसार में जो मैथुन आगर सुख है कैसा है, गोलगुला आलू का भरता के ऊपर कुट लगाने वाला थोड़ा है। तो इसलिए जो भक्ति करता है भगवान को, अनन्य भक्ति में आ जाता है, जमुनाचार्य की तरफ प्रभुपाद ने इसीलिए इसकी कोट करते हैं, कहते कि जो इस प्रकार जो असली सुख को प्राप्त किया है भक्ति के माध्यम से, फिर वो मैथुन आगर संसार में वापस जाने के लिए कभी भी चिंतन नहीं करेगा, वो फिर भक्ति फिर ऐसे ही मैथुन सुख को फिर आस्वादन करने के लिए अति घृणित माने घृणा इसके मन में आएगा। महाराज जमुनाचार्य जी के समान फिर उसके मुख विकृत हो जाएगा, उस दृश्य में थूकने की इच्छा होगी। जो शुद्ध भक्ति करते हैं उसी को प्रकृति में आनंद प्राप्त होता है, असली आनंद कहाँ से प्राप्त होता है, कृष्ण की भक्ति में है। जे सुख मिले हरि भजन में से सुख नहीं अमीरी में है। बड़ा करोड़पति होने से कोई थोड़ी आनंद लेता है, हरी भक्ति में आनंद, जो भक्ति किए हैं तो जानते हैं भक्ति का कैसे सच्चा आनंद। प्रहलाद महाराज जैसे, जमुनाचार्य जैसे हैं, महाराज कुलशेखर, कई महान संतों की उदाहरण दी गई है, अम्बरीश हैं। आगे फिर प्रहलाद महाराज ने कह रहे कि मौन व्रत सुत तप अध्ययन स्वधर्म व्याख्यारोह जप समाधय आपवर्ग्या प्रायः परं पुरुषते स्तोदितेन्द्रियाणं वार्ता भवन्ति तो न वात्रः तु दाम्भिकानां। हे भगवान, मुख्य मार्ग के लिए 10 संतुलित विधियां हैं, मौन रहना, हर एक से बात न करना, व्रत रखना, सभी प्रकार का वैदिक ज्ञान संचित करना, तपस्या करना, वेदाध्ययन करना, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्य को पूरा करना, शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत स्थान में रहना, मौन मंत्र उच्चार करना, समाधि में लीन रहना। मुख्य की ये विभिन्न विधियाँ सामान्यतया व्यापार है, और मन और उन लोगों के लिए जीविका उपार्जन है जिन्होंने इंद्रियों को जीता नहीं, क्योंकि ऐसे लोग मिथ्या अहंकारी होते हैं। अतः हो सकता है कि ये विधियाँ सफल न भी हो। हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि एकमात्र भक्ति की तात्पर्य के प्रारंभ करते हैं कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं धुन्वंती ही कत्स्येन निहारमेव भास्कर। ऐसा बिरला पुरुष जिसने कृष्ण की पूर्ण अनन्य भक्ति स्वीकार की है, वही पाप कर्म की खर पतवार का उन्मूलन कर सकता है, जिससे वह फिर कभी नहीं उगे। वह इससे केवल भक्ति के द्वारा कर पाता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से कुहरे को भागा देता है, उसी प्रकार माया को दूर करके भगवान के चरण में मन को निवेश करने के लिए एकमात्र माध्यम क्या है? भक्ति। नहीं तो जो दूसरे कुछ माध्यम आत्म साक्षात्कार के, जैसे यहाँ पर कहा गया कि मौन व्रत रखना, तपस्या करना, अध्ययन करना, बाद वर्णाश्रम धर्म को पालन करना आदि आदि सब बहुत कुछ कहा गया, ये कहते कि प्रकृति में खाली देखवा है नहीं? ये सब व्यक्ति कभी कभी कुंभमेला में दिखाई पड़ते हैं, कुंभमेला में भीड़ लग जाता है कि मौनी बाबा है, कहते कि ये कितने साल से मौन धारण करके रखे, 25 साल मौन रखा है, तो फिर तो भीड़ लग जाता है, देखो देखो 40 साल से बात नहीं किया, मौन धारण करके रखा है, तो वो किसी ने मौन धारण करके ऐसे मूर्खों को मूर्खों से क्या लेने के लिए जाएंगे, तो बाबू पैसा वो है, अपना जीविका चलाने के लिए इतने साल मौन धारण करके रखा है। बा कोई कोई योगी को साधना करके ही कुछ सिखाए, पानी का ऊपर चलना है कि प्रभुपाद जी ने एक बार जो जाते थे बंगाल में, गंगा को पार करना था, तो रास्ता में और नौका दूसरे साइड में था, तो इसलिए ये लोग अपने शिष्यों के साथ में, विदेशी शिष्यों के साथ में यहाँ प्रतिज्ञा किए, लेकिन एक योगी आया, वो पानी के ऊपर चल के दूसरे साइड चला गया, पानी के ऊपर चल, बस वो नौका को वेट नहीं किया, चल के चला गया। तो प्रभुपाद जी को तो बोला, ऐसे लोग बोले कि देखो स्वामी जी, आप इतनी बड़े संस्था का संस्थापक आचार्य, आपके पास भी कुछ चमत्कारिता है, दिखाओ, देखो आपके सामने ये चला गया, कहाँ, पानी के ऊपर चल के चला गया गंगा के ऊपर, उसको नौका का जरूरत नहीं पड़ा। प्रभुपाद ने कही कि उसको बुलाओ इधर वापस, हम इसको बड़ा प्राइज देंगे, उसको यहाँ से आ जाएगा चल के। तो तुरंत कोई उसको चिल्लाया, उसको आवाज़ की, बोले इसको भेजो दोबारा नौका, तो उसको फिर वो दूसरे साइड चल के आ गया। प्रभुपाद ने पूछे कि अच्छा, आपने इसे पानी में चलने का जो कला है, इसको कैसे सीखने के लिए आपको कितना दिन लगा? तो बोला कि मुझे कम से कम 30 साल लग गया। क्या करने के लिए? पानी के ऊपर चलने का कला सीखने के लिए। उसके लिए बहुत तपस्या उठाना पड़ा, कितने प्रकार के हैं, खाना पीना छोड़ के कितनी तपस्या करके ही ये योग सिद्धि को सिद्धि प्राप्त किया, पानी के ऊपर चलना। लेकिन ये सिद्धि कब तक रहेगा? जब तक तुम्हारा शरीर है। प्रभुपाद जी कहे कि सिद्धि तुम्हारे पास कब तक रहेगा? ना, जब तक शरीर है, शरीर खत्म हो जाएगा तो वो सिद्धि और काम नहीं, अगला शरीर में नहीं काम करने वाला। तो बोले देखो, ये केवल पानी का ऊपर चलना सीखने के लिए है, कितना साल बिता दिया? 30 साल बिता दिया। ये इसको भगवतधाम ले जाएगा, जन्म मृत्यु संसार से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त करेगा ये? आए, ऐसा गारंटी है कि कभी बीमारी पड़ेगा नहीं, बीमार होगा इसको? ये पानी का ऊपर चलने के लिए 25 साल बिता दिया, हम इसमें क्यों समय को व्यतीत करें? मनुष्य जीवन का जो असली समय मिला किसके लिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंत समय में यदि भगवान के नाम का स्मरण नहीं कर पाएगा, भगवान के नाम नहीं ले पाएगा, फिर दूसरे बार जन्म लेना पड़ेगा। तो ऐसे पानी में सीखने का, चलने का सीखने के भी क्या फायदा है? कुछ लाभ में आएगा अंत समय? कुछ उसको सहायता करेगा है? इसलिए ऐसा ही प्रहलाद, ऐसे जोगी बनना, बड़ा बड़ा कुछ सिद्धि हासिल करना, उसके माध्यम से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र मार्ग ही भक्त्या वासुदेव परायणा, केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। केवल भगवान वासुदेव को जो अनन्य भक्ति करके उनकी प्रसन्न करने का एकमात्र विधि है। न्यूयॉर्क में जब प्रभुपाद जी रहते थे, एक जोगी डेली आता था, कहता मैं थोड़ा जोगो सिखाऊंगा। किसको? आपका जो शिष्य लोग है, इनको थोड़ा जोगा सिखाना चाहता हूँ। जोगो माने क्या? उसे आसन सिखाना चाहता, आसन प्राणायाम। प्रभुपाद जी ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि प्रभुपाद कहते हम योग भक्ति योग करते हैं। योग कई प्रकार के होता है, हठ योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, स्वाध्याय, कई योग है, उसमें से भक्ति योग भी, इसको भी योग कहते हैं। संतुष्ट सततंग योगी जतात्मा दृढ़ निश्चय मयोर्पित मनोबुद्धि जेमत भक्त समय प्रिय। भगवान कहे कि जितनी प्रकार के योगी है जो मेरी भक्ति करते हैं, जो सदा संतोष रहते जो भक्ति योगी, वही मुझे अति प्रिय है। इसीलिए प्रभुपाद जी ध्यान नहीं, लेकिन वो योगी कहा कि स्वामी जी क्यों नहीं सुनते हो, मैं डेली आता हूँ आपके शिष्यों को फ्री में सिखाऊंगा, दूसरों से तो $500-500 लेता हूँ क्या महीना का चार्ज, लेकिन अपना शिष्यों को आपके शिष्यों फ्री में सिखाऊंगा, चांस दो उनको सिखाने के लिए। प्रभुपाद जी कुछ बोलते नहीं थे। एक दिन हटात बार बार पीछे पड़ गया एकदम, जब करने नहीं दिया, जब करते थे प्रभुपाद जी खड़ा हो गए। तो और प्रभुपाद जी का एक शिष्य था, प्रभुपाद जी उसको बुलाए, तुम आओ इधर, ब्रह्मानंद, उनके नाम था क्या ब्रह्मानंद प्रभु, अभी रहते वृंदावन, बहुत तगड़े हैं टेकन बहुत। तो उनको बुलाए, ब्रह्मानंद राव वो तो यंग थे उस समय, 21-22 साल के लड़का थे, तो उनको बुलाओ इधर। और जोगी ऐसे खड़ा हुआ और वो भी खड़ा हो गए बहुत तगड़ा। तो उनको कहे कि देखो ये जो बॉय तुम्हारे सामने जो यंग लड़का खड़ा है, अभी इसको बोलूँगा कि ये जोगी को पकड़ लो, इसका गला दबा दो, अभी तुमको मृत्यु माने ये मार डालेगा, तुम्हारा जोगो तुमको रक्षा करेगा, कैन यू और जोग साहब यू। ब्रह्मानंद प्रभु करेंगे जो प्रभुपाद जैसे कहते थे, मैं भी एकदम कच्चे ऐसे कपड़े को ऐसे करके पूरा ऐसे पोज का ऐसे पोजीशन दिखा रहा, पोज कर रहा था कि जैसे इसको अभी पकड़ लूंगा, किसको वो डर के भाग गया और कभी भी आया नहीं दूसरी बार योग सिखाने के लिए है। तो इसलिए ऐसा सारा योग पद्धति सीखने से, मौन धारण करने से, योग सीखने से और कितने प्रकार के स्वाध्याय करने से उसको फायदा क्या है। पहले व्यक्ति को सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। अंते नारायण स्मृति, अंत समय में नारायण के स्मरण करके ही शरीर त्यागने से वैकुंठ जाएगा जीव, नहीं तो जन्म मृत्यु संसार से भटकते रहेगा। भगवान ने प्राणी को जन्म मृत्यु संसार से मुक्त करने के लिए एकमात्र उपाय है हरे रणाम हरे रणाम हरे रणाम इव केवलम कलौ नास्ते इव नास्ते इव नास्ते इव पत्रे अन्यथा। नहीं तो ये मन केवल दुष्ट है और हमको प्रतिष्ठा के मार्ग में ले जाएगा। प्रभुपाद जी इसलिए इसको कोट करते, दुष्ट मन तुम्हें किसे रैष्टम्भ प्रतिष्ठा रे निर्जन र घरे तब हरिनाम केवल कैटव। अगले श्लोक समझ हो रहा, रूपे इमे सद सती तब वेद सृष्टे बीजांकरा विवन चान्यत रूपकस्य युक्ता समख्या तु वयत्र विचक्षन्ते त्वां योगेन वर्णिनि पदारुषु नान्यतः स्यात्। प्रामाणिक वैदिक ज्ञान द्वारा मनुष्य यह देख सकता है कि विराट जगत में कार्य तथा कारण के रूप भगवान ही है, क्योंकि यह विराट जगत उन्हीं की शक्ति है। कार्य तथा कारण दोनों ही भगवान की शक्तियाँ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अतएव हे प्रभु, जिस तरह चतुर मनुष्य कार्य कारण पर विचार करते हुए यह देख सकता है कि अग्नि किस तरह काठ में व्याप्त है, उसी तरह भक्ति में लगे हुए व्यक्ति समझ सकते हैं कि आप किस प्रकार से कार्य तथा कारण दोनों है। भगवान किसी प्रकार सभी कारण के कारण है, इसको केवल कौन समझ सकता है? भगवान की भक्त है, भक्त्या मांग अभिजानन्ति, केवल भक्त ही भगवान को समझ सकता है, कोई दूसरे उपाय से नहीं। जैसे पिछले श्लोक में कहा गया कि मौन व्रत तप अध्ययन और आदि माध्यम से, जब अन्य अन्य उपाय से कोई भी भगवान को नहीं समझ सकता है। केवल जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं वही भगवान को समझ सकता है। भक्त स्वयं भगवान कहते कि भक्त्या ही एक भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, मनुष्य आदि कारण के कारण पुरुष केवल भक्ति की में ही समझ सकते हैं, इसका कोई दूसरी उपाय नहीं है। नेक्स्ट श्लोक, तुम वायुरग्निरिव निर्वियदम्युमात्रा प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहाश्च सर्वतोमेव सगुण विगुणश्च भूमन् नान्यतोदस्यापि मनो वचसा निरुक्तम्। हे परमेश्वर, आप वास्तव में वायु भूमि अग्नि आकाश तथा जड़ है। आप तन मात्राएं प्राणवायु पांच इंद्रियां मन चेतना तथा मिथ्या अहंकार है। निसंदेह आप स्थूल तथा सूक्ष्म हर वस्तु है। भौतिक तत्व तथा शब्द या मन से व्यक्त प्रत्येक वस्तु आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये श्लोक की व्याख्या पहले भी हो चुका है, पहला श्लोकों में से इसकी भी। भगवान किस प्रकार सर्वत्र व्याप्त रहते हैं, अपने विराट रूप में सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। भगवान के दो रूप है जो कि इनके निर्विशेष की प्राकट्य निर्विशेष प्राकट्य जो कि सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। भगवान कहते हैं अहं सर्वस्य प्रभव मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुद्धा भाव समन्विता। भगवान कहते मैं ही सभी कारण के कारण हूँ, सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ, सब कुछ मेरे से ही प्रकट हुआ है, चाहे आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत, सबके कारण में ही हूँ। मत सर्वं प्रवर्त, सब मेरे से उद्भूत हुआ। इसी प्रकार भगवान भी गीता में कहते हैं कि मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थित। प्रभुपाद इसको कोट करते हैं, मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ और प्रत्येक व्यक्ति मुझ में स्थित है, फिर भी मैं उन सर्वत्र दृष्टिगोचर नहीं होता हूँ। भगवान वही वास करते हैं जहाँ उनके भक्त उनके गुण कीर्तन करते हैं। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदये न च मदभक्त जत्रा गायन्ति तत्र तिष्ठति नारद। यदि वो भगवान सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र है, लेकिन भगवान को देखने में दर्शन करने में कौन सक्षम होता है? एकमात्र भक्त ही सक्षम होता है। भगवान तो वहीं पर भक्त को दर्शन देते हैं जहाँ भक्त एकत्रित होकर उनके जसगान गुणगान करते हैं। यदि भगवान सर्वत्र है लेकिन भगवान को देखने में केवल भक्त ही सक्षम होता है। अगले श्लोक नैते गुणान गुणिनो महदाययो ये सर्वे मनः प्रभुतया सहदेव मर्त्यो आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति त्वात् मेयं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्। न तो प्रकृति के तीनों गुण सत रज तथा तमो, इन तीनों गुणों के नियामक प्रधान देव, न पांच भूत पांच स्थूल तत्व, न मन, न देवता, न मनुष्य ही आपको समझ सकते हैं, क्योंकि हे ये सभी जन्म तथा संहार के वशीभूत रहते हैं। ऐसा विचार करके आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत व्यक्ति भक्ति करते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति वैदिक अध्ययन की परवाह नहीं करते अपितु वे व्यावहारिक भक्ति में अपने को लगाते हैं। इसलिए प्रभुपाद करते कि भक्त्यामंग अभिजनान्ति, केवल भक्ति द्वारा ही परमेश्वर को जाना जा सकता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य अर्थात जो भक्त है, ये 46 श्लोक में जो वर्णित विधियाँ के विषय में मथापच्ची नहीं करते हैं। क्या मौन व्रत श्रुत तप अध्ययन स्वधर्म आदि ये सब जो पालन करना कहा गया, उसमें अपने सिर को ज़्यादा उपयोग नहीं करता है, वरन भगवान की शुद्ध भक्ति करने में समय को व्यतीत करता है। क्योंकि बार बार प्रहलाद महाराज अपने स्तुतियों में से इसी के पर बल देते हैं कि केवल भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और कई दूसरे मार्ग नहीं है। कहते कि आपके तीनों गुण जो सत रज तम गुण के माध्यम से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, बा अन्य कोई देवता वास्तव ये इंद्रियां मन ये कोई भी सहायता नहीं कर पाएंगे। किसको प्राप्त करने में? भगवान को प्राप्त करने। भगवान को तो केवल शुद्ध भक्ति की माध्यम से शुद्ध भक्त प्राप्त करता है। इसलिए प्रहलाद महाराज सलाह सदा देते कि ऐसे जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वैदिक, तो ये सब वैदिक अध्ययन में व अन्य अन्य देखवा कार्य में व्यस्त न रहकर व्यवहारिक भक्ति में अर्थात डायरेक्ट भगवान की सेवा में जुड़ जाते हैं। इनको ज़्यादा और कोई कार्य करने के लिए तो बैठकर सुबह थोड़ा जोग करना है, सुबह उठकर आजकल जो फैशन थोड़ा उठ के क्या करते हैं, थोड़ा प्राणायाम करना, योग करना और कुछ करना देखवा, कुछ बैठकर कुछ बहुत मंत्र पढ़ना है। पढ़ना मंत्र का अर्थ नहीं जानते हैं लेकिन पढ़ते रहना, पढ़ना है बस पढ़ते रहेगा, उसका अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। दूसरों को दिखाना चाहते, देखो कैसे संस्कृत पढ़ता हूँ मैं, अच्छा पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा संस्कृत पढ़ने के दिखाता हूँ, वेद अध्ययन करता है, हैं, और कितने प्रकार के थोड़ा जाने के लिए कोई अन्य अन्य देवताओं को पूजा करने के लिए भी जाता है, कई प्रकार के कुछ कर्म करके ही मौन धारण करता है। अपना दिखाता कि देशों में कैसे सदाचारी हूँ, कभी सत्य कभी झूठ नहीं कहता हूँ, लोगों की वो परोपकार कार्य में लगा हुआ हूँ, हैं, कि स्कूल खुलना, मेडिसिन बांटना, रिलीफ दा ये सब करना, ये सब कार्य में लगा करो, लेकिन अंतकरण में उसकी भावना क्या रहता, स्वयं का प्रसिद्धि प्रतिष्ठा की भावना रखता है। लेकिन ऐसे ही भावना के माध्यम से वो केवल सतरजतम गुणों के द्वारा प्रभावित होकर केवल आप थोड़ा सा ही झूठा प्रशंसा और निंदा की भागी बनता है, लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने कहते कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति वैदिक अध्ययन की परवाह नहीं करते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, अपितु वे व्यावहारिक भक्ति में ही आपको लगाते हैं। व्यावहारिक भक्ति किसको कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मा निवेदनम आदि नवदा भक्ति में अपने को तत्पर रखते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। स्वयं भक्ति करते हैं, दूसरों को भक्ति का शिक्षा भी प्रदान करते हैं। 50 नंबर श्लोक। तत्ते अर्हतम नम स्तुति कर्म पूजा कर्म स्तुति चरण श्रवण कथायां संसेवय त्वयि विनति सरंगया किं भक्तिं जन परमहंस गतौ लभेत। अतेभे श्रेष्ठतम पूज्य भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि षडंग भक्ति किए बिना परमेश्वर को प्राप्त होने वाला लाभ भला कौन प्राप्त कर सकता है। षडंग भक्ति के अंग है प्रार्थना करना, समस्त कर्मफल को भगवान को समर्पित करना, पूजा करना, आपके निमित्त कर्म करना, आपके चरण कमल का सदैव स्मरण करना तथा आपके जस का श्रवण करना। पहले तो नवधा भक्ति कहे थे, जब हिरण्यकशिपु ने पूछा था प्रहलाद गुरुकुल में क्या सीखा बेटा थोड़ा मुझे बताओ, है, हिरण्यकशिपु अपने सिंहासन में बैठकर बोलाया प्रहलाद, प्रहलाद आओ, बड़ा प्रेम से प्रहलाद आकर पूरे नीचे प्रणाम कर रहे थे, बड़ा स्नेह से उनके आँख से पानी उन्हें आनंदाश्रु बहने लगा, किसका? हिरण्यकशिपु बात्सल्य में भर गया है, लड़का को गोद में उठाया, उन्हें लेकर प्रहलाद को गोद में बैठाया, बोला बेटा गुरुकुल में क्या सिखाई, क्या तुम टीचर लोग ने क्या सिखाया, और जो सबसे जो अच्छा तुमको लगा, जितनी जो सिखाया उससे तुमको जो सबसे अच्छा लगा वो बोलो क्या सिखाया। प्रहलाद ने क्या कहे थे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता भक्तिश्चेत् नवलक्षणा। भक्ति के नवलक्षण यही है, यही मुझे सबसे अच्छा लगा, टीचर जितने सिखाया था इतने सब में यही अच्छा लगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। हिरण्यकशिपु तो सांप की तरह देखने लगा, वो जो उसका टीचर दोनों खड़े थे कौन, प्रहलाद महाराज जो पढ़ाते थे कौन, संध और अमरक, शुक्राचार्य जी के दो शिष्य खड़े थे, वो लोग भी कंप रहे थे। हिरण्य बोले हमने सिखाया इसको ऐसा है, हमने सिखाया, अरे कौन सिखे प्रहलाद, ये लोग राजा है महाराज, हमको क्रोधित मत होइए, ब्राह्मण के प्रति ऐसा ही क्रोधित नहीं होते, हमने नहीं सिखाया इसको। हिरण्यकशिपु ने शांत बोला कि अच्छा, अब प्रहलाद तो बड़ा शांत बालक थे, 5 साल के बालक कुछ जानते नहीं जैसे बैठे थे, कि अरे मूर्ख ये तुमको सिखाया नहीं तो कहाँ से सिखाया इसको, हैं, बोला ठीक है, थोड़ा चिंता करके कहा कि बेटा जो सीखा तो ठीक है, लेकिन ये पूरा श्लोक बहुत अच्छा है, लेकिन एक शब्द इसमें उठाना, वो शब्द को हटा कि वहाँ पर कहाँ लिखना, क्या लिखना, मेरा नाम लिख देना और सब ठीक रहेगा। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, विष्णु नाम हटाना, वो यहाँ पर क्या लिखना, हिरण्यकशिपु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मा निवेदनम, और सब सही है। प्रहलाद कहे कि नहीं पिताजी ऐसा नहीं है, श्रवणम कीर्तनम, गुस्सा में उठा के फेंक दिया नीचे, है? सुनते हैं मेरा बेटा ऐसे कहता तो मेरे पास में, लेकिन वहाँ तो नवदा भक्ति के बारे में कहे थे, और नव भक्ति का एक एक आचार्य भी है, श्रवण का आचार्य परीक्षित, कीर्तन के सुखदेव गोस्वामी, स्मरण के प्रहलाद महाराज, अर्चन में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन में लक्ष्मी जी, अर्चन में पृथ्वी महाराज, वंदन में अक्रूर जी के नाम आता है, अर्चनम वन दास्य में हनुमान जी, साख्य में सुबल सीदाम सार अर्जुन आदि सखाएँ, और आत्मनिवेदन में बलि महाराज के नाम आता है। वो तो नवदा भक्ति के बारे में वहाँ कहे थे, लेकिन अभी इस वक्त में उन्होंने कहते कि सड़ा शॉर्ट में शॉर्टकाट में बोलते कि नव भक्ति पहले थे पहले, लेकिन अभी की कितने भक्ति कहते सड़ांग भक्ति, सड़ंग भक्ति के अंग क्या है उसको कहते हैं श्लोक में है प्रार्थना करना है। तत्ते अहतम नमः स्तुति कर्म पूजा कर्म श्रुति चरणयो श्रवणंग कथायाम। इसलिए प्रभुपाद जी कहते पहला कहते प्रार्थना करना, समस्त कर्म फल को भगवान को समर्पित करना, पूजा करना, आपके निमित्त कर्म करना, आपके चरण को सदैव स्मरण रखना, स्मरण करना तथा आपके जस का श्रवण करना। तो भक्ति की प्रारंभ कहाँ से होती है, ये जितने भी अंग कहा गया कहाँ से शुरुआत होती भक्ति है, श्रवण करना है, श्रवण से ही शुरुआत होता है। शास्त्र भागवत की प्रारंभ से ही सुखदेव गोस्वामी कहते कि धर्म सनुष्ठितात् पुंसा विश्वक्सेन कथा सुज न उत्पादयेत् यदि रतिम श्रमये वही केवलम। यदि कोई वर्णाश्रम धर्म में रहकर गृहस्थ वानप्रस्थ बा ब्रह्मचारी सन्यासी अपने अपने धर्म को ठीक एकदम शास्त्र के आदेश अनुजाई ठीक से पालन करते हैं, लेकिन हरि कथा श्रवण में इनको रुचि उत्पन्न नहीं होता है, तो फिर भी वो जो कुछ करता है तो सब कुछ केवल देखवा है, वो उसके आध्यात्मिक उन्नति में किसी प्रकार की सहायता नहीं करते हैं। इसलिए कहते श्रम एव ही केवलम, वृथा परिश्रम कर रहा है। इसलिए भक्ति के प्रारंभ होती है श्रवण से, कहाँ से सुनना, कहाँ से सुनना, कान से सुनना, लेकिन किससे सुनना है जो वैष्णव है। इसलिए शास्त्र में ये सतर्कता की जाती है, सनातन गोस्वामी कहते कि स्वर्प उच्चिष्ठ जता जथापय है, श्रवणम नव्य कर्तव्यं सर्प उच्चिष्ठ जथापय। सांप जैसे कोई मैंने दूध तो अमृत के समान होता है, लेकिन सांप इसमें मुख लगाकर थोड़ा पी लेता दूध को और दूध छोड़ के चले जाता, तो दूध को कोई दूसरा पिएता है, यदि वही दूध है लेकिन उसको यदि कोई पिएगा वो मरेगा है। तो उसी प्रकार अवैष्णव मुखद गिर्न पूत हरि कथा अमृतम श्रवणंग नैव कर्तव्यं है। जो अवैष्णव है भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो भी केवल अपने धन कमाने के लिए संस्कृत पढ़ते हैं, किस लिए, पंडित बन के भागवत कथा करके क्या मिलेगा, धन मिलेगा, उसी के माध्यम से अपने परिवार मेंटेन करना चाहता है। प्रचार करना उसका मुख्य लक्ष्य नहीं, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है, धन कमाना है। इसीलिए संस्कृत पढ़ते, बनारस में जाकर संस्कृत पढ़ेंगे, किसके लिए, संस्कृत पढ़ के भागवत पढ़ेंगे और भागवत पढ़ के कथा करेंगे, कथा करके धन कमाएंगे, परिवार चलाएंगे, फेमस बनेंगे। तो ऐसे लोगों को कहते कि पेशेदार कथाकार, प्रोफेशनल रिसाइटर है। ये कैसे होते ना, जैसे सर्प सांप की तरफ कि भौतिक इच्छा भरा हुआ है उनके मन में, ये जो भागवत को पढ़ते तो उनकी मुख से जो भागवत कोई सुनता वो कोई उसको भक्ति में आगे बढ़ने में उसको सहायता नहीं करते हैं। इसलिए स्कंद में कहा जाता, प्रभुपाद सतर्क कराते थे कि ऐसे पेशेदार की कथाओं को सुनना नहीं चाहिए है। बस स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो कि चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे, वो कहते थे कि भागवत पढ़ो किया भागवत स्थान ही, भागवत को सुनना है पढ़ना है तो किसी भागवत के पास में जाओ, व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत को श्रवण करके समझने के लिए किसके पास जाना चाहिए, एक व्यक्ति भागवत के पास जाना चाहिए, वैष्णव के पास में जाकर सुनना चाहिए। जो आचरण करता और जो बोलता है वो स्वयं भी आचरण करता है, यदि व्यक्ति जो कुछ बोलता है वो स्वयं आचरण नहीं करता था, उसका वाणी का प्रभाव दूसरे के ऊपर नहीं डालने वाला है। प्रभुपाद जी जब भगवत गीता का रचना नहीं के देख मैंने तात्पर्य नहीं लिखे थे, भक्ति वेदांत तात्पर्य, इसका पहले हजारों गीता भी दुनिया में चलता था लेकिन कोई नहीं भक्त बनता था उस गीता पढ़कर। बादशाह जगत में भी सो अंग्रेजी ट्रांसलेशन बहुत था, लेकिन जब प्रभुपाद जी की किताब आए उन्होंने प्रिंटिंग किया, अभी देखो कितनी हजार संख्या में लोग उस गीता को पढ़कर भक्त बनते हैं, क्योंकि उस गीता में शक्ति है। प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखा स्वयं को इसको आचरण किया है, आपन ही आचरी प्रभु जीवेरे सिखाए, गौरांग महाप्रभु भी जो प्रचार करते थे स्वयं आचरण करते थे, फिर दूसरों को प्रचार करते थे। हैं, स्वयं आचरण नहीं करेगा, दूसरों को कहेगा तुम खुद ही शक्कर खाता है, और दूसरे बोले तुम शक्कर नहीं खाना, छोड़ देगा, तुम्हारे वाणी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ने पाला वाला है। कभी कभी प्रभुपाद ने एक उदाहरण देते थे महात्मा गांधी का, है महात्मा गांधी यदि वैसे ही संत, एक प्रकार के लोगों को उनको सोचते थे कि संत है, लेकिन एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था छोटा बच्चा, वो बहुत शक्कर खाता था। क्या खाता था? शक्कर। शक्कर खाना छोड़ना नहीं था, कृमि हो गए पीते, पेट में कीड़े हो गए थे, और वो कितने में डॉक्टर मेडिसिन देने पर वो तो शक्कर खाना छाड़ता नहीं तो कैसे बीमारी ठीक होगा। तो बुढ़िया ने कहा कि गांधी के पास ले जाता हूँ, गांधी के साथ थोड़ा परिचय था, गांधी जी के पास लिया। गांधी जी के पास लिया तो कहा कि इसको देखिए पापू जी बहुत शक्कर खाता है, इसको मना कर दीजिए, शक्कर नहीं खाएगा। गांधी जी कहे अभी नहीं, इसको थोड़ा लेके आओ, एक महीने के बाद फिर लाना। फिर एक महीने के बाद लेके गए, देख गया तो वो शक्कर भी खाता था उस समय, पूरा इसका शरीर डिग डिग हो गया था, कृमि सब कीड़े हो गए थे पेट में। गांधी जी ने बोले कि बेटा तू क्यों शक्कर खाता है, शक्कर खाने से पेट में कीड़े हो जाते हैं, तुम्हारे रुगणा हो जाता है, और काल से शक्कर नहीं खाना, खाना नहीं शक्कर। बच्चा कहे कि नहीं खाऊंगा, खा के आ गया, बोलकर आ गया, और सत्कुशल जादू हो गया, वो शक्कर खाना छोड़ दिया। कितना भी प्रयास करने पर उसको लोग कहते थे अरे गांधी बुढ़ा इधर नहीं, खा ले खा ले, मुख बंद करी नहीं खाता था। तो उसको वापस गए जाकर पूछे कि गांधी जी आप क्या जादू जानते हैं, इसको क्या कर दिए, सत को सत छोड़ दिया, क्या खाना पूरा टच भी नहीं करता। और उस बात का पहला दिन जब मैं लेके आया था तो बोल सकते थे, एक महीने का टाइम क्यों लिए। तो गांधी जी ने कहे कि देखो ये बेटा को जो बच्चा को जो पहला दिन लेके आए थे मेरे पास में, उस दिन मैं भी स्वयं खाता था क्या शक्कर, इसलिए मैं यदि बोलता था कि तुम शक्कर खाना छोड़ दो तो मेरा वाणी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं डालता, इसलिए इसको शक्कर खाना छोड़ने के लिए मैं भी शक्कर खाना छोड़ दिया। तो इसी के लिए जो जो कोई आचरण करता है वो उसकी वाणी का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जो भक्ति करते हैं, भागवत को स्वयं आप पढ़ते हैं और भागवत के शिक्षाओं के आधार पर स्वयं का जीवन को निभाते हैं, और वो जब उनकी मुख से भागवत सुनने से हमको भी भक्ति प्राप्त होता है। इसलिए श्रवण कहाँ करना चाहिए? भक्तों की मुख से भागवत पढ़ गया भागवत स्थान भक्ति भागवत से ग्रंथ को सुनना चाहिए। इसलिए प्रहलाद महाराज ने यहाँ पर छह प्रकार के भक्ति की भक्ति करने के लिए हम सिखाते हैं। षडांग भक्ति, ये षडंग भक्ति के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो उनमें से कहते कि श्रवण है, श्रवण कथायाम, ये छह अंग से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रवण कथायाम, भगवान की कथा को श्रवण करना, श्रवण किया किए बिना भक्ति में प्रवेश नहीं किया जाता, ये नवदा भक्ति का भी पहला अंग है। श्रवणम, इसके बाद कीर्तनम, इसलिए कहते कि श्रवणम, इसके बाद प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना, जैसे प्रभुपाद ने सर यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने स्तुतियाँ की, प्रार्थना करते हैं नृसिंह देव को, अपना हृदय की अभिव्यक्ति को भगवान के सामने खोलना है, भगवान के पास में दैन्यता से अपने को नीच दीन हीन पतित ऐसा ही समझते हुए भगवान के सामने भगवान को प्रार्थना करना, स्तुति करना, जैसे अक्रूर जी ने स्तुति की है, वंदना करना, बहुत सुंदर स्तुति की, पूरे भागवत स्तुतियों में भरा हुआ है। कुंती महारानी की प्रार्थना स्तुति, फिर भीष्मदेव की प्रार्थना है, ध्रुव महाराज की प्रार्थना, ध्रुव महाराज की स्तुति, प्रहलाद की स्तुति, अक्रूर की स्तुति, कितनी स्तुति सर स्तुतियों में भरा हुआ। ऐसा ही भक्तों को भगवान को स्तुति करना भक्ति का भी एक अंग है। भगवान को यदि प्राप्ति करना चाहते हो तो हमारे मन की जो भावना को भगवान के सामने खोलने के लिए बोलने के लिए ये प्रार्थना, जो स्वतस्फूर्त भाव से हमारे मुख से जो भावना निकालते हैं उसी को प्रार्थना कहते हैं। भक्ति वरुण ठाकुर ने बहुत सुंदर प्रार्थना गाए, नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रार्थना गाए, अपने मन की अभिव्यक्ति को भगवान के सामने व्यक्त करना है। विपद में आते तो कभी कभी हो जाता है, प्रार्थना करते कि नहीं करते हैं सब लोग, सभी लोग प्रार्थना करते हैं सुबह शाम, कितने लोग प्रार्थना करते हैं सुबह शाम मंदिर में, कम से कम कुछ नहीं कर प्रार्थना नहीं करते हो हैं, कुछ नहीं आता तो हरे कृष्ण आता ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हैं, हे राधे हे कृष्ण कृपा करके हमें आपकी सेवा में लगाइए, यही प्रार्थना है। ये भी प्रार्थना है, ये हरे कृष्ण मंत्र भी प्रार्थना है, भगवान की सेवा की भिक्षा करना है। तो इसलिए प्रार्थना करना, समस्त कर्मफल को भगवान को समर्पित कर देना। दूसरे जो अंग है, छह अंग से, एक तो श्रवण करना, भगवान की प्रार्थना करना, और समस्त कर्मफल को है कर्म स्तुति कर, कर्म कर्म को स्तुति, इसके बाद कर्म, समस्त कर्म फल को किसको अर्पण करना, भगवान को अर्पण करना, बाकी समस्त कर्म भगवान के लिए करना, अपने के लिए नहीं। खाना भी किसके लिए, अरे खाना कैसे भगवान के लिए, कैसे भगवान के लिए खाना कैसे, क्योंकि शरीर भी भगवान की सेवा के लिए है। कहते ना, खाने के लिए जीना या जीने के लिए खाना है, जीने के लिए खाना, किसके लिए, क्यों जिएंगे तो मनुष्य शरीर में भगवान की सेवा करेंगे। इसलिए सब कुछ भगवान के लिए करना, कर्म जो करना है बा। और कुछ लोग होते खाने के लिए जीते हैं खाने के लिए जीना, अच्छा अच्छा खाना मिला, लेकिन पता नहीं ये शरीर जो भस्म जैसे प्रभुपाद पहले तात्पर्य में लिखे हैं, ये सब चार्वाक मुनि के शिष्य होते हैं, कहते कि ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत जावत जीवेत सुखं जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनरागमन भवेत। अरे शरीर जो छूट जाएगा, भस्म हो जाए, क्या होने वाला, क्या किसको कौन देखा, क्या होगा कौन, जितना दिन शरीर में है अच्छा से खाओ, अच्छा से खाओ और तगड़ा बनो, मजा मजलिस करो। है यदि तुम्हारे पास में धन नहीं है तो दूसरे को चिटिंग कर लो, कर्जा ऐसे मांग लो, हैं कर्जा ले लो, ऋणं कृत्वा दूसरे कर्जा ले लो, लूट लो, कैसे भी कुछ करके धन कमाओ और खा अच्छा से, क्या करो, घी खरीदो, प्योर घी पियो। तो ऋषि था, कम से कम शराब पीने नहीं बोला, लेकिन बोला कि घी पियो, हैं अच्छा से शरीर को तगड़ा बनाओ, इंद्रिय तृप्ति कर लो, खाने के लिए जीना है। नहीं, खाने के लिए हम जीते नहीं हैं, हम इसलिए जीते कि भगवान की सेवा करने के लिए। इसलिए जितनी आवश्यक, क्या खाते हम, भगवत प्रसाद। भक्त को पहचान का एक लक्षण है कि क्या जो खाता केवल भगवान के प्रसाद खाता है, दूसरा कुछ खाता नहीं है, भगवत भक्तों का यही परिचय है। तो जो कुछ खाएगा भगवान को अर्पण करके प्रसाद बनाकर खाएगा, ये भक्त की परिचय है। प्रभुपाद जी में एक अपने लेक्चर में कहते कि प्रसाद खा के ही भक्त बन जाओ, ज़्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रसाद खा के ही भक्त बन जाओ। मैं इसको प्रैक्टिकल कर देखा है, पाश्चात्य जगत में हिप्पियों को प्रसाद खिला खिला के भक्त बना दिया है, केवल प्रसाद खिला के उनको सब भक्त बना दिया। तो इसलिए प्रसाद, लेकिन प्रसाद खा के शरीर को सुस्थ रखकर भगवान के लिए कर्म करना है। और जो कुछ कर्म करते हैं, कम से कम जत करोसी जदासनोसी जज्जुहोसी ददासी जत जत तपस्वसी कौंतेय तत्कुरु समदार्पणम, भगवान ने कहा गीता में नवम अध्याय 27 नंबर श्लोक। जो कुछ तुम करते हो जत करोसी जदासन, जो कुछ तुम खाते हो जत करोसी जदासनोसी जज्जुहोसी, जो कुछ उपहार देना चाहते हो, जो कुछ तुम दूसरे को दान भी देना चाहते हो, ददासी जत तपस्या भी करना चाहते हो, ये सब कुछ मेरे प्रसन्नता के लिए करो, दूसरों के लिए नहीं। तपस्या करना है तो एकादशी व्रत करो, भगवान कहते मेरे लिए तपस्या करो, एकादशी व्रत रखो, अभी नृसिंह चतुर्दशी काल, भगवान नृसिंहदेव नृसिंहदेव प्रसन्न करने के लिए व्रत रखो, फास्टिंग रखो, ये तपस्या है, जो कुछ करते हो तो मेरे प्रसन्नता के लिए करो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कौन सा कर्म करना चाहिए, सबसे जो भगवान को प्रसन्न करता है, प्रचार। भगवान कहते जो प्रचार करता है उससे बड़ा प्रिय मेरा संसार में कोई नहीं है, जो भगवान के प्रचार करता है, गीता की उपदेश को प्रचार करता है, हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करता है, भक्त बनाता है, तो उससे प्रिय भगवान की कोई नहीं है। इसलिए ये भी षडंग भक्ति का एक अंग है, जो कुछ हम करें तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, कार्य करने निष्काम से निष्क्रिय बनकर नहीं रह सकता व्यक्ति, कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन कर्म किसके लिए करना, भगवान के लिए, भगवान की पूजा करना, पत्रंग पुष्पंग फलंग तोयंग जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहंग भक्ति उपहृतम आसनामी प्रयतात्मना, भगवान को पूजा करना, पत्ते दे दो, कौन सा पत्ता, तुलसी की पत्ता, बा गजेंद्र जैसा एक कमल का फूल तोड़कर भगवान को दिया और ग्रह से अपने को मुक्त कर लिया, पत्रंग पुष्पंग फल दे दो, कुछ नहीं होता है। सबरी ने फल खिलाया, क्या खिलाया? बेर खिलाया रामचंद्र जी को है। और वो बिदुरानी ने केला का छिलका छिलका खिलाते, खिलाने की उसकी इच्छा नहीं थी, वो क्या खिलाना चाहती थी? केला खिलाना चाहती थी, लेकिन इतनी भाव में बिहोल थी कि भगवान को छिलका खिला रहा है कि केला खिला रहा है उसको पता नहीं थी है। लेकिन भगवान वो छिलका को खा के प्रसन्न हो गए हैं। जैसे पत्रंग पुष्पंग, कुछ का पुष्प दे दो, फल दे दो, जल दे दो, कुछ नहीं, तो इसी के माध्यम से पूजा की जाती है। पत्रंग पुष्पंग फलंग त्वयंग जो मैं भक्त्या प्रयच्छति, भक्त यदि भक्तिपूर्वक इसको अर्पण करता है भगवान इसको स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं ये षडांग भक्ति का जो अंग है, प्रार्थना करना, समस्त कर्मफल को भगवान को अर्पित करना, पूजा करना भगवान की, और सबसे बड़ा पूजा संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से कलयुग में की जाती है। हैं संकीर्तन यज्ञ क्या? हरे कृष्ण मंत्र की प्रचार के माध्यम से हैं ये सबसे भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। आपके निमित्त कर्म करना, किसके लिए? किसके निमित्त कर्म करना? भगवान के निमित्त आपके, ये तो वर्णन हो चुका। आपने चरण कमल के सदैव स्मरण रखना, हम जितने जो कुछ कार्य करते हैं इसकी एकमात्र लक्ष्य है कि सदा भगवान को स्मरण रखना। प्रहलाद महाराज इसके आचार्य हैं। स्मार्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधेशु एतयोर एव किंकरः। जितने भी विधि निषेध हम पालन करते हैं उसकी एक लक्ष्य है सदा भगवान को स्मरण रखना, कभी उनको भूलना नहीं। यही तो जीवन का लक्ष्य है। अंत समय में शरीर का कभी भी नष्ट होने का समय, कमल दल जल जीवन टलमल है, भजऊ हरिपद नीति रे। कमल की पत्ते के ऊपर पानी जैसे कभी भी नीचे गिर सकता है, ऐसा ही ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी इसके अंत हो सकता है। इसीलिए सदा भगवान को स्मरण रखना, ये भी षडांग भक्ति का एक अंग है, और यही श्रेष्ठ अंग है, यही लक्ष्य है। अंते नारायण स्मृति, सदा भगवान को स्मरण करना। इसी प्रकार षडांग भक्ति की उपदेश देते हुए प्रह्लाद महाराज अपने स्तुति को संपूर्ण करते हैं। इसी श्लोक से ही प्रह्लाद महाराज की स्तुति के संपूर्ण होता है। भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग धन, भक्ति योग कृष्ण, कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन। भक्ति योग ही भक्तों की एकमात्र धन है और दूसरा धन नहीं है। लेकिन भक्ति योग किसको कहते हैं? ना कृष्ण नाम के श्रवण करना और कीर्तन करना, भगवान के लिए रोना, क्या करना? श्रवण क्रंदन। भगवान के नाम जब लेते तो आंख से अश्रु बहना, तभी समझना कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने कहते थे कि नयनाद गलद अश्रु धारया बदनं गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितंग बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, कब उस दिन आएगा जब आपकी नाम ग्रहण करूँगा, जब गोविंद कृष्ण कहकर मैं जब पुकारूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे ही जब आपकी नाम कीर्तन करूंगा, मेरे आंखों से नदियों की धारा के समान अश्रुओं की धारा बहेगा, शरीर रोमांचित हो जाएगा, पुलकित हो जाएगा, मेरे वाणी गदगद हो जाएगा। प्रभु उस दिन कब आएगा हैं? तो इसको कहते भक्ति। जब भक्ति सत्य ऐसे अष्ट सात्विक विकार जब शरीर में प्रकट हो जाते हैं तभी हम फिर भक्ति करते हैं, तब फिर समझा जाता कि अभी हम भक्त बने हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं तो भक्त बना नहीं है, भक्त बनने के लिए कभी थोड़ा प्रयास करता हूँ। प्रभुपाद जैसे महान संत कहते थे, नहीं प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे। इसी प्रकार प्रह्लाद महाराज भी शुद्ध भक्त होते हुए भी वो भी दैन्यता को प्रकट करते हैं, मैं तो ऐसे ही असुर कुल में जन्म हुआ हूँ, हिरण्यकशिप के पुत्र के रूप में, मेरे पास में कोई सद्गुण नहीं है, हे नृसिंहदेव आप कृपा करके मुझे आपके शरण में लीजिए। ऐसा ही शुद्ध भक्ति करने के लिए विशेष रूप में प्रह्लाद महाराज ने इस भक्ति षडंग भक्ति को कहते हुए, नवधा भक्ति तो कहते लेकिन षडंग भक्ति के दूसरे भी अर्थ है कि षडांग माने भगवान के चरण में संपूर्ण शरणागत हो जाना है। षडांग षडांग शरणागति होइबे जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। भक्ति विनोद ठाकुर कहा कि शरणागति के छह लक्षण को जो जीवन में उतार लेता है उसकी सारे प्रार्थना को भगवान सुनते हैं। ऐसे भक्त के मन में जो भी इच्छा होता है उसको भगवान पूर्ण कर देते हैं। दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रुते वरण अवश्य राखीवे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्यर स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। दैन्यता को प्रकट करना, अत्यंत दीनहीन पतित रूप में अपने को समझना, ऐसे ही भाव को व्यक्त करना है। आत्मनिवेदन सर्वस्व बलि महाराज की तरफ भगवान के चरण में अर्पण कर देना। आत्मनिवेदन गोत्रुत्ते वरण, भगवान ही मेरी रक्षक है, भगवान ही मेरे पालक है, भगवान जो कुछ करते मेरे मंगल के लिए करते हैं, ऐसे भावना को अपनाना है। अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालना, भक्ति का अनुकूल को स्वीकार करना, प्रतिकूल को त्यागना है। जो अनुकूल है भक्ति में, शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल, भजन में क्या क्या अनुकूल है भक्ति विनोद ठाकुर उस भजन में सारे कह दिए हैं। ये सब अनुकूल है, उस चर्चा करने के लिए यहाँ समय नहीं, लेकिन उस भजन में पूरा कहे क्या क्या अनुकूल है। शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल, फिर कहते माधवतीति भक्ति जननी जतने पालन करिए। माधवतिथि नृसिंहदेव का व्रत भी ये माधवतिथि है, माधवतिथि एकादशी भी है, और भगवान को प्रसन्न करने वाले जो भी तिथि आते हैं इसको भी माधवतिथि कहते हैं। ये सब भक्ति के अनुकूल है, इसीलिए शरणागत भक्त अनुकूल को स्वीकार करता और प्रतिकूल को त्यागता है। जो भक्ति के प्रतिकूल है, अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघस्य लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति, इसको त्यागता है। इसी प्रकार भक्ति के जो षडंग वा शरणागत के छह अंग को भी जीवन में उतार लेता है, भगवान उसकी सारे इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। ऐसे ही अपने भावना को व्यक्त करते हुए हम जैसे बद्ध जीवन को सारे शिक्षा देते हुए भक्ति की शिक्षा, प्रह्लाद महाराज अपने स्तुति को समाप्त करते हैं और नृसिंहदेव बड़े प्रसन्न होकर प्रह्लाद को कहते, प्रह्लाद मैं तुम्हारे स्तुति में बड़े प्रसन्न हो गया हूँ, और तुम जो चाहते हो वर मुझे मांगो, जो चाहते तुम मुझे मांग सकते हो, हैं तुमको जो चाहिए बहुत कष्ट सहे हो, मुझे मांगो जो चाहिए हैं। प्रह्लाद भद्रं ते प्रीति अहं ते असुर उत्तम वरं वृणीष्य अभिमतं काम पूर अस्य अहं नृणाम। भगवान ने कहा, नृसिंहदेव ने कहा कि हे सौम्य प्रह्लाद, हे असुर उत्तम, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मैं हर जीव का इच्छा पूर्ण करता हूँ, इसीलिए तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांग लो, जो चाहिए मांग लो, मेरा जो भक्ति करता है तो निराश नहीं होता है, जो चाहिए। भगवान ने लोभ दिखाए किसको, बार बार कही मांग लो कुछ मांग लो, जो चाहिए ले लो मेरे से, मेरे भक्ति करने से कोई निराश नहीं होता। प्रह्लाद महाराज कहे कि प्रभु, एक तो राक्षस कुल में जन्म हुआ हूँ, ऐसा ही मेरे मति भौतिक इच्छा से भरा हुआ है, और फिर आप लोभ दिखा रहे, मांग लो हाँ, मुझे क्यों लोभ दिखा रहे, ऐसा लोभ दिखाना आपका उचित नहीं है। मैं आपकी भक्ति किया हूँ व्यापार के लिए नहीं, कुछ किया और कुछ देना और कुछ लेना, ये तो व्यापारी करते हैं। न स भक्त सवई वणिक, जब भगवान की भक्ति करके भगवान से कुछ मांगते हैं, इंद्रिय तृप्ति के साधन, उनको क्या कहते हैं, व्यापारी, और व्यापारी के समान है। इसलिए हे प्रभु नृसिंहदेव, मैं व्यापार के लिए आपकी भक्ति नहीं किया हूँ, मुझे लोभ मत दिखाइए। यदि आप किस देने चाहते, बार बार करे मांग लो तो मेरा पिताजी को उद्धार कर दीजिए आपके धाम में, मेरे पुत्र होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है। पू शब्द का अर्थ नर्क, त्र का अर्थ जो नर्क से पितरों को उद्धार करता है उसको कहते पुत्र, पुत्र शब्द का अर्थ ही जो पितरों को नर्क से उद्धार करता है। प्रह्लाद महाराज ने कहे कि मेरा एक कर्तव्य बना हुआ है मेरे पिता को नर्क से उद्धार करना, किसको, हिरण्यकशिपु। इसलिए यदि वो हिरण्यकशिपु आपके प्रति इतनी ईर्ष्यालु बना, आपके प्रति इतनी द्वेष किया, महापापी था, लेकिन मेरे यही प्रार्थना है कि आप उसको उद्धार कर दीजिए, आपके धाम में लीजिए। भगवान ने कहे कि प्रह्लाद, ये वर तुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है, तुम जैसे पुत्र जिस घर में जन्म लिए आए हैं उसके तो 21 पीढ़ी ऐसा ही मेरे धाम में आते हैं। प्रभुपाद जी कहते कि 21 पीढ़ी कौन स्मरण रखता है, कोई स्मरण रखा है 21 पीढ़ी क्या है, कोई व्यक्ति आप लोग जितने बड़े कोई 21 पीढ़ी तक अपना पूर्वजों को दिया नाम याद रखा, कोई नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते प्रकृत में त्रिसप्त माने ये तिब्बत, वो पूर्व जन्म में भी इसका जो भक्त होता है उसका जो पूर्व जन्म की जो माता पिता भी बने थे वो भी उद्धार हो जाते, वो भी भगवतधाम जाते, पहले जो सात पीढ़ियाँ उसके पहले पूर्व जन्म में थे वो भी सब भगवतधाम चले जाते हैं। बस भक्त का जितनी भी सब संबंधित रहते हैं माता की तरफ से, पिता की तरफ से, उसके स्त्री की तरफ से, जितनी भी संबंधित उसके साथ में जुड़े हुए ये सभी को भगवान अपने धाम में ले जाते हैं। शिवास ठाकुर को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि शिवास तुम्हारे घर के तो कुत्ते बिल्ली नौकर नौकरणी ये सभी भी मुझे अति प्रिय है, ये सभी मेरे धाम में जाएंगे। इसलिए भक्त बनना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और हम यदि प्रह्लाद महाराज की स्तुतियों को श्रवण करके ही उनके आचरण करेंगे, नवधा भक्ति में जीवन को बिताएंगे, विशेष रूप में कलयुग के लिए श्रवण और कीर्तन, श्रवण कीर्तन करने से ही हम सदा भगवान को स्मरण करने में सक्षम होंगे। जीवन का लक्ष्य यही है, अंते नारायण स्मृति। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नृसिंहदेव भगवान की जय, प्रह्लाद महाराज की जय, समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय, हरे।